Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev. श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा इस नए कार्यक्रम आज से हम शुरू कर रहे हैं, गौर कथामृत कार्यक्रम। मैं फ्रेंकली आशा नहीं कर रहा था इतने सारे भक्त आएंगे। मैं अभी श्री राम प्रभु को बोल रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 25 लोग आएंगे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट 100 डिवोटीज आ गए। तो इससे पता चलता है कि आपको गौर कथामृत में इंटरेस्ट है। शीरा दही के साथ साथ आपको गौर कथा भी अच्छा लगता है। तो ये हम लोग आज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं पहली बार, फिर महीने में एक बार ये कार्यक्रम रखा जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सिस्टमेटिकली पढ़ें अच्छी तरह से। जैसे आज क्योंकि पहला दिन है, छीड़ा दही फेस्टिवल का जो चर्चा मॉर्निंग क्लास में हुआ था, और सवेरे के क्लास में कोई कोई चीज़ें हैं जो हम कवर नहीं कर पाए थे, वो आज हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। अगली बार से हम आपको बताया जाएगा एडवांस में कि कौन सा अध्याय हम चर्चा करने वाले हैं, और आप अपने अपने चैतन्य चरितामृत लेकर आए। और चैतन्य चरितामृत ये अगर आपके पास पुस्तक के रूप में है तो पुस्तक लेकर आए, और पुस्तक अगर नहीं तो आप मोबाइल में या किसी में पढ़ के। अगर किसी भक्त के पास चैतन्य चरितामृत सेट नहीं है और आप खरीदी करना चाहते हैं तो वो भी कुछ डिस्काउंट प्राइसेस पे मिले हैं। जब भी पिछली बार ये गौर पूर्णिमा के दिन तो वो भी श्री राम प्रभु जी हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है सम सेट्स, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी भी, हिंदी भी हो जाएगा। प्रभु जी बोले हिंदी मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। थोड़ा वाक्य मैंने ऐड कर दिया, आपने हाँ बोला मैंने ऐड कर। तो एटलीस्ट हर घर में एक चैतन्य चरितामृत सेट होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे भागवतम गीता और चैतन्य चरितामृत, ये पुस्तकों में सारा ज्ञान दिया हुआ है, सारा वैदिक ज्ञान जो इसमें दिया गया। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत से भी ज्यादा श्रेष्ठ चैतन्य चरितामृत। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि अगर पूरे दुनिया के सारे लाइब्रेरीज के सारे किताब खो जाएं तो भी कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ एक किताब रह जाना चाहिए, वो है श्रीमद् भागवत। अब भाई जान श्रीमद् भागवत भी चला जाए, अगर चैतन्य चरितामृत रह गया तो कोई नुकसान नहीं। तो चैतन्य चरितामृत के बारे में कहा गया है, एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे गा सकते हैं। चैतन्य चरित्र ए अमृते रसिंधु, कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। चैतन्य चरित्र ए अमृते रसिंधु, कौन बताएगा इसका अर्थ? यस प्रभु जी, इज लाइक ओशन ऑफ नेक्टर, ये अमृत के सागर के समान है। कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु, हाँ, एक बूंद भी जो है मन और हृदय को संतुष्ट। एक बूंद भी चैतन्य चरितामृत आप ग्रहण करोगे तो मन और काम संतुष्ट हो जाएगा। पीछे तक आवाज आ रहा है माधव कीर्ति प्रभु माता जी, वहां तक आवाज है क्लियर? तो भव सिंधु तरे बारे आचे जार चित्त, हाँ इसका अर्थ कौन बताएगा? भव सिंधु तारी बारे आचे जार चित्त, तो माता जिसमें से कोई बताना चाहेंगे, प्रभु जिसमें से कोई बताना चाहेंगे, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं, यू ऑलरेडी आंसर्ड, अत्याहार हो जाएगा फिर। हाँ यस, और कौन बोलना चाहते हैं? भव सिंधु तरी बारे आचे जार चित्त, मतलब क्या हुआ भव सिंधु? यस प्रभु, हाँ इफ यू वॉन्ट टू क्रॉस, अगर आपको हिंदी, इफ यू नो हिंदी स्पीक इन हिंदी तो इजी रहेगा, दो बार ट्रांसलेट। अगर आपको भव सागर पार करने की इच्छा है, आप में से कोई है जो भव सागर पार करना चाहते हैं? अरे एक दो लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, वो डूबना चाहते हैं लगता है। तो भव सिंधु तरी बारे आचे जार चित्त, जिसको भव सागर पार करने की इच्छा है क्या करना होगा? श्रद्धा करी सुन से चैतन्य चरित्र, उसको क्या करना चाहिए? श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? एनडीटीवी नहीं, न्यूज 18 नहीं, क्या सुनना चाहिए? चैतन्य चरितामृत। हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, आप जानते हैं प्रभुपाद समुद्र जहाज से गए, कितना तकलीफ होती है जाने में समुद्र की यात्रा, कि समुद्र की यात्रा में ऐसा नहीं, अभी ट्रेन में कदम स्टेशन आता है आप नीचे उतर सकते हो, समुद्र में ऐसे नहीं कि चलो नीचे घूम के आ जाते हैं, हाँ मछलियों से मिल के आ जाते हैं, हरी बोल प्रभु हाउ आर यू, नहीं इतना रिस्की होता है समुद्र की यात्रा। प्रभुपाद को कितना समय लगा जाने में? एक महीना से भी ज्यादा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं आई हैव हार्ट अटैक, सी सिकनेस, वॉमिटिंग, नौसिया, उल्टी आ रही है और चक्कर आ रहे हैं, बट माई ओनली सोलेस, मेरा एकमात्र आश्रय है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद को बहुत प्रिय था। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए उनके पास यही किताब था चैतन्य चरितामृत, और वो पढ़ते थे रेगुलरली। और जब प्रभुपाद भागवत अनुवाद करने बैठे, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके पहले भगवत गीता कंप्लीट किया, फिर भागवत अनुवाद कर रहे थे, 6 स्कंद हो गए, 7 स्कंद हो गए, फिर प्रभुपाद जी रुक गए और रुक के बोले अभी मैं क्या अनुवाद करूंगा? चैतन्य चरितामृत। और प्रभुपाद जी ने बोला भक्तों को, मैं ये चाहता हूं कि ये पुस्तक मैं ट्रांसलेट करूंगा, आप जो मैंने उस समय क्या कैसेट्स होते थे, आपको कैसेट्स याद है? C90, C60, सोनी TDK कैसेट्स, तो उस समय कैसेट भी नहीं थे, रील टू रील रिकॉर्डर होता था। तो प्रभुपाद जी बोले जो मैं रिकॉर्ड करके दूंगा आपको टाइपराइटर पे टाइप करना होगा, उसमें गलतियां सुधारनी होगी, फिर उसको बुक को छापना होगा, पेंटिंग्स बनाने होंगे, छाप के बाइंडिंग करना होगा, ये 17 किताबों में होगा चैतन्य चरितामृत के 17 वॉल्यूम्स। और मैं ये चाहता हूं कि ये सब काम पूरा हो कितने समय में, 2 साल में, राइट, 2 महीने में। हरे कृष्ण, अभी आजकल भक्तों को 2 महीने में पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, नहीं? 2 साल में नहीं, 2 महीने में ट्रांसलेशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, बाइंडिंग, पेंटिंग। सारे भक्त प्रभुपाद को तुरंत जवाब दिए, क्या जवाब दिया? इम्पॉसिबल, असंभव। और प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया? प्रभुपाद जी बोले, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी, मूर्खों के शब्दकोश में। और प्रभुपाद के आशीर्वाद से भक्तों ने प्रयास किया, और आपको विश्वास नहीं होगा, 2 महीने में पूरा कंप्लीट हो गया। एक भक्त जो उस टीम में थे, मुझे बता रहे थे कि जो डिवोटीज पेंटिंग करते थे, वो दिन में 12-12, 14-14 घंटे पेंटिंग करते, ऐसे टेबल पे बैठे, ऐसे चेयर पे बैठे हैं, और एक ईजल होता है जिसपे पेपर लगाया जाता है पेंटिंग करना है, करते 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 12 घंटे बाद बस गिर जाते हैं, दूसरे ड्यूटी आते हैं उसको उठा के बिस्तर पे सुलाते हैं, फिर वो खुद करते हैं आगे, शिफ्ट ड्यूटी पे रहता है। इतना मेहनत किया भक्त। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको? ये दिखाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है इसको पढ़ना। प्रभुपाद जी ने अपना पूरा हृदय दिया इस पुस्तक को छपाने में, और श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जब वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे आखिरी दिनों में, बहुत कमजोर हो गए थे, तब उस समय वो भी कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? श्री चैतन्य चरितामृत। इसे चैतन्य चरितामृत को एक दैनिक कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा रोज पढ़ें, या रोज नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में 2 दिन पढ़ें। ये जो अभी आज हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं गौर कथा अमृत का, ये तो सिर्फ एक सैंपल है, महीने में एक बार होगा, लेकिन इससे प्रेरणा लेकर आप अपने घर में, अपने दैनिक जीवन में, अपने अपने सुविधा अनुसार ऐसे स्केड्यूल बनाए कि भैया 15 मिनट, आधा घंटा रोज चैतन्य चरितामृत पढ़ें। बाकी शास्त्र भी पढ़ने हैं, लेकिन जैसे राइस दाल होता है, लेकिन थोड़ा सा स्वीट हो जाए तो और भी अच्छा लगता है, नहीं? जैसे अभी आप लोगों ने प्रसाद में खिचड़ी लिया, और खिचड़ी के साथ में फिर थोड़ा चीड़ा दही और चीड़ा दूध, है ना, थोड़ा मीठा होना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत बहुत मीठा है। ये फर्क यह है कि भौतिक दुनिया में अगर मिठाई आप ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा? यस, जैसे आदित्य प्रभु को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, 10-12 तो खा ही सकते हैं, नहीं 24, 10-12 से ज्यादा खाया तो क्या होगा? डायबिटीज प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं? लेकिन चैतन्य चरितामृत में कोई डायबिटीज का सवाल नहीं है। जितना ज्यादा आप आस्वादन करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। अभी इंटरेस्टिंग है कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में 3 किताबें लिखी गई हैं महान। कौन कौन से 3 किताबें लिखी गई हैं? एक एक करके बताइए। श्रीराम प्रभु, एक्चुअली सारा क्रेडिट श्रीराम प्रभु को जाता है, और गौरभक्त प्रभु को, इनकी प्रेरणा से मैं बोल रहा हूं। ये श्रीराम प्रभु, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल। अभी एक ही व्यक्ति के बारे में लिखना है तो 3-3 पुस्तक लिखने की क्या जरूरत है? इसका इतिहास क्या है, क्यों है 3 पुस्तक लिखे? पहला किताब कौन सा लिखा गया था? अभी आप मत, कोई जो नए, जिनको नहीं मालूम है वो हाथ ऊपर करिए, मतलब नए लोग बताइए कुछ। यस, कौन बता रहा था आंसर? यस, पहला कौन सा लिखा गया? पहला पुस्तक था चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत किसने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर। आप में से कितने भक्तों को मालूम है वृंदावन दास ठाकुर के इतिहास के बारे में, वो कैसे जन्मे और कौन उनके माता थे? कितने भक्तों को नहीं मालूम है? अच्छा, ठीक है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक महान भक्त हुए हैं जिनका नाम है श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर किसके अवतार हैं? नारद मुनि के। तो श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान रोज कीर्तन करते थे, और एक दिन क्या हुआ, भक्तों को बहुत डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था? कि नदी के पार कुछ सैनिक आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, भक्तों के जीवन पे खतरा था। तो श्रीवास ठाकुर, वो तो निर्भय हैं, तो भगवान पे पूरा भरोसा है। लेकिन श्रीवास ठाकुर थोड़ा चिंतित थे दूसरे भक्तों के लिए। तो श्रीवास ठाकुर ने अपने घर में पूजा शुरू की, भगवान की पूजा की भक्तों की रक्षा के लिए। कौन से भगवान के? नरसिंह भगवान। प्रभुपाद जी बोलते हैं, लॉर्ड नरसिंह देव रिमूव्स ऑल ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान नरसिंह देव सारे बाधाओं को दूर करते हैं। तो शिवास ठाकुर ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह। बोलिए, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, ये सब नरसिंह भवन के प्रेयर्स बोल रहे थे। अचानक महाप्रभु उनके घर में आए। श्रीवास श्रीवास दरवाजा खोलो, श्रीवास मैं वही हूं, मैं वही हूं, आई एम ही। श्रीवास को इतने मग्न थे उनको पता ही नहीं चला, डिस्टर्ब ही नहीं हुए। तो फिर भगवान ने बहुत जोर से धक्का दिया, इतनी जोर से धक्का दिया कि दरवाजा टूट गया। और श्रीवास की ओर देखो, श्रीवास जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो वो मैं हूं, देखो। और जब चैतन्य श्रीवास ने पीछे मुड़ के देखा तो कौन सा रूप था? नरसिंह, गौर नरसिंह। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ही एक भगवान का रूप है जिसमें सारे दर्शन दिए, जिसने सारे अवतारों का रूप दिखाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राम भगवान का रूप दिखाया, किसको? मुरारी गुप्ता को। और राधा कृष्ण का रूप दिखाया, किसको? रामानंद राय को। और नरसिंह भगवान का रूप दिखाया, किसको? शिवास ठाकुर को। और किसको दिखाया नरसिंह भगवान का रूप? चांद काजी, यस चांद काजी। और सब सब अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये रूप किसको दिखाया? ये जो आंसर करेगा उसको सही में इनाम मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है किसी को आंसर मालूम नहीं है, भगवान ने दिखाया ही नहीं। लेकिन दिखाया किसको? दिखाया मालूम है? एक ज्योतिष को। भगवान एक ज्योतिष के पास गए, वो ज्योतिष असली ज्योतिष, ऐसा नहीं जो आजकल रास्ते पे तोता रख के बैठते हैं, वो नहीं। ये पहले जमाने में ज्योतिष शास्त्र एक साइंस होता था, जैसे मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग साइंस है, बॉटनी है, वैसे एक साइंस होता था एस्ट्रोलॉजी। तो उसे ज्योतिष ने कैलकुलेट कर, हरि बोल आप बताइए पूर्व जन्म में मैं कौन था? तो उसने आंखें बंद की और उसको क्या दिखाई पड़ा? अंधकार, झील, कंस की झील। उसमें भगवान प्रकट हो रहे हैं चतुर्भुज रूप में और फिर द्विभुज बन गए। उसको लगा ये तो एक बालक है, ये मेरे सामने खेल रहा है, ये भगवान कृष्ण कैसे? उसने फिर पूरा अपना वो जो मंत्र था वो रिसेट किया, रिबूट किया पूरा सिस्टम, और फिर से मंत्र बोले पता लगाने के लिए। इस बार पूरा मंत्र बोलना शुरू किया, उसको क्या दिखाई पड़ा? प्रलय, पूरा प्रलय। और एक विशाल रूप दिखाई पड़ रहा है, कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार। केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश, ये मत्स्य अवतार, ये तो बालक है, गलती हो गई। फिर से रिसेट किया, इस बार उनको दिखाई पड़ा कूर्म रूप, भगवान कछुए के रूप में समुद्र मंथन हो रहे हैं। फिर रूप दिखाई पड़ा उनको नरसिंह रूप, भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं क्रोध से। लगा ये तो नहीं हो सकता। फिर मंत्र बोला तो वराह देव धरती माता को धीरे 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 ऊपर लेकर आ रहे हैं। भगवान हंस के बोले, हरि बोल सांगा मैं कौन हो तो, मैं कौन था? बोला अभी मैं जा रहा हूं प्रसाद के लिए, शाम को बताऊंगा। भगवान उसको दिखाया, भगवान और एक ज्योतिष के पास गए। भगवान ने ज्योतिष से पूछा, आप ज्योतिष, उसका नाम भी सर्वज्ञ था, हरि बोल सर्वज्ञ जी आप बताइए कि पूर्व जन्म में मैं कौन था? तो ज्योतिष ने कैलकुलेट किया, उसको क्या दिखाई पड़ा? क्या दिखाई पड़ा? अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्म ज्योति, उसके अंदर सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं। और भगवान ने पूछा, ज्योतिष बताओ मैं कौन था। ज्योतिष ने बोला आप मेरी गणना के अनुसार परम ब्रह्म हो, सब कारणों के कारण आप ही हो, आप सर्वव्यापक हो। भगवान हंस के बोले अरे तुम्ही किचू न जानीला, तुम्हारा काहीच कळला नाही, आपको समझ में है मैं कौन था। मैं पूर्व जन्म में एक ग्वाला था, कावड़ बॉय, आई वाज अ कावड़ बॉय। मैं गाय चराता था, मैंने गायों की सेवा की थी, इसीलिए मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। तो चैतन्य महापुरुष सारे अवतारों के शिरोमणि है। अब यहां पर श्रीवास ठाकुर पूजा कर रहे हैं नरसिंह भगवान के, इधर मुड़ के देखा तो साक्षात नरसिंह। मैं आप कैसे लगा नहीं आप मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, तो बोलते हरि बोल, पीछे देखो मैं कौन हूं, और देखा तो दो भाई और एक बहन आ रहे हैं, हरि बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। श्रीवास ने प्रणाम किया, श्रीवास मेरी प्रार्थना करो। श्रीवास जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो वो मैं ही हूं। और इस समय श्रीवास ठाकुर उनकी प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु हंस के बोले श्रीवास तुमको डर लग रहा है, तुमको डर लग रहा है, यू आर फियरफुल, किस बात का डर लग रहा है? यही वो मुसलमान सैनिक है नदी के पार से आएंगे आप पर आक्रमण करने के लिए। वो कैसे आएंगे? वो सारे सैनिक अपने राजा के आज्ञा के अधीन है, वो राजा के हृदय में मैं रहता हूं, मैं राजा के हृदय में हूं। और अगर मैं राजा को आज्ञा देता हूं, आज्ञा देने के लिए अपने सैनिकों को, तो वो आज्ञा देंगे आपको गिरफ्तार करने के लिए। आपको समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को पहली बार मुझे भी नहीं आया था। वो बोल रहे हैं कि मैं राजा के हृदय में हूं, आई एम इन द हार्ट ऑफ द किंग, एंड इफ आई ऑर्डर द किंग देन द किंग विल ऑर्डर द सोल्जर्स टू अरेस्ट यू। मैं राजा को आज्ञा दूंगा, राजा सैनिकों को देंगे। मैं राजा के महल में जाऊंगा, मैं उसको उसके गद्दी पे पकड़ लूंगा, उतारूंगा, बोलूंगा हे राजन मेरे प्रश्न का जवाब दो, आप अपने राज्य के सब जानवरों को बुलाओ, मानवों को बुलाओ, और जितने भी आपके आध्यात्मिक नेता हैं मुल्ला काजी सबको बोलो नमाज पढ़े, कुरान से गाएं, अल्लाह के गीत गाएं, और ये जानवरों में क्या प्रभाव होगा? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके औकात ही नहीं है कुछ करने की। फिर मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सब जानवरों को लेकर आऊंगा और एक पागल हाथी को ले आऊंगा, और मैं उस हाथी को भी कृष्ण प्रेम दूंगा। मैं उस हाथी को बोलूंगा कि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं उस हाथी को कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। और आपको विश्वास नहीं होता, अभी विश्वास दिलाता। उस समय श्रीवास ठाकुर की एक नीस भांजी या भतीजी भाई की बेटी, जिसका नाम था नारायणी। चैतन्य महाप्रभु नारायणी को बोले नारायणी बोलो कृष्ण कृष्ण, और नारायणी कृष्ण कृष्ण वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे, वो जमीन में लोटने लगे, सारे प्रेम के विकार प्रकट होने लगे। और उसकी अवस्था को देखकर महाप्रभु हंस के बोले श्रीवास अब बताओ आपको डर लग रहा है, आपको मेरे में विश्वास हो गया कि नहीं? आप श्रीवास बोले अब मुझे कोई डर नहीं है, अगर प्रलय भी आया, प्रलय का काल भी आया, तो मैं जोर से आपका नाम पुकारूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। श्रीवास ठाकुर की ये भतीजी नारायणी बाद में बड़े हो गए, इनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो अपने ससुराल चले गए। अभी उनका मैका जो है वो है श्रीवास ठाकुर का घर, वो नदी के इस पार है, और नदी के उस पार एक द्वीप है जिसको बोलते हैं मोदद्रुम द्वीप। क्या बोलते हैं? मोदद्रुम। आपने चीड़ा दही खाया ना, इसलिए बोलने में तकलीफ हो रही है। इसको बोलते हैं मोदक ध्रुव द्वीप, क्या बोलते हैं? आपको याद नहीं है ऐसा, तो मोदक याद है सबको? हाँ, उसका पहला भाग ले लो, मोदक ध्रुव द्वीप। तो मोदक ध्रुव द्वीप में एक स्थान है जहां पर नारायणी देवी का विवाह हुआ। उनके हस्बैंड का नाम नहीं बताया गया, लेकिन हुआ क्या कि जब उनके गर्भ में एक बालक आया, कुछ महीने हुए थे, और बच्चे के जन्म होने से पहले बच्चे के पिताजी गुजर गए, मतलब नारायणी के हस्बैंड। अब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि फाइनेंशियली इनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसी घर के पास एक बहुत बड़े भक्त रहते थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त ठाकुर। वासुदेव दत्त ठाकुर बोले कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस बालक की, मैं इसके लिए पैसे और जो भी आवश्यक है। मैं और नारायणी वासुदेव दत्त के घर में भगवान की पूजा करते, आराधना करते। तो यही नारायणी, जब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का नाम रखा गया वृंदावन दास। और यही वृंदावन दास ठाकुर बड़े हुए, ये नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ली उन्होंने। ये नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे, और इन्होंने ये किताब लिखी जिसका पहले नाम था चैतन्य मंगल। अभी देखिए, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को कभी देखा ही नहीं था। इन्होंने अपने जीवन में भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए ही नहीं थे, और फिर भी इतना सुंदर ग्रंथ लिख दिया। कैसे, जब ने किसी को देखा ही नहीं तो कैसे उसके बारे में लिखेंगे? यस, कोई बताएगा इसका आंसर? यस, सुन के। यस, सुनने से, मतलब देखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। जब आप कृष्ण लीला सुन रहे भागवत से, अधिकृत स्तोत्र से, तो आप कृष्ण की लीलाओं को देख रहे हो। आप अभी गौर कथा सुन रहे हो, मतलब गौरंग महाप्रभु के लीलाओं को देख रहे हो। आप गौरंग महाप्रभु के सामने हो, मैं नहीं हूं गौरंग महाप्रभु, लेकिन ये लीलाएं, इट इज सो पावरफुल। इसके बारे में एक श्लोक है, गौरांगेर मधुर लीला जारे कर्ण प्रवेशीला, हृदय निर्मल भेल तार। जिसके कानों में गौरंगेर मधुर लीला, गौरंग महाप्रभु की मधुर लीला ने प्रवेश किया है, उसका हृदय क्या हो गया? निर्मल हो गया। दैट इज द पावर ऑफ गौर लीला। तो वृंदावन दास ठाकुर किताब लिख रहे थे, जन्म लीला बताई, कैसे महाप्रभु प्रकट हुए, किसके घर में महाप्रभु किसके घर में प्रकट हुए? जगन्नाथ मिश्र और शची देवी। एक सांप से खेल रहे थे चैतन्य महाप्रभु, जब महाप्रभु छोटे बालक थे, एक सांप आया घर में। आप जानते हैं अगर घर में सांप आए तो क्या होगा? मुझे याद है एक बार हम बेलगाम में थे, और कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, और उस बालकनी में से एक भक्त ने मजाक में ऐसे एक प्लास्टिक का एक सांप डाला। जैसे वो सांप आया, सब भागे, नहीं टाइगर प्रेमानंदे, पूरा विश्वास था भगवान रक्षा करेंगे। यहां पर जब सांप को देखा, शची माता घबरा गई और जोर से पुकारने लगी, हाय हाय गरुड़ा गरुड़ा। गरुड़ गरुड़ का नाम क्यों ले रहे हैं वो? हाँ, क्योंकि सांप जब गरुड़ जी का नाम सुनेगा तो भाग जाएगा। गरुड़ जी सांप को देखते हैं तो बोलते हैं, आपको सारी कथा याद है, अभी बोलने का क्या फायदा फिर? तो गरुड़ जी का नाम इसलिए ले लेते कि सांप चले जाए, लेकिन वो सांप जाने लगा, और नीमा ने सांप को हरी बोल थम्बा थम, पता नहीं मराठी में बोला कि कौन सी भाषा में बोला, ओंकार प्रभु, व्हाट लैंग्वेज दे वुड स्पीक, बंगाली प्रभु जी थे वहां पे। प्रभु जी सांप को देख के खड़े रहे वहां पे निर्भय होके। एक बार मायापुर में ऐसा हुआ था, एक्चुअली हमारे मायापुर के हेड पुजारी पंकज आंगे प्रभु आरती कर रहे थे ऑल्टर पे, नरसिंह भगवान के, और एक सांप आ गया। हरे कृष्ण, मनमोहन श्याम प्रभु आप क्या करोगे, आरती करने में सामने सांप आया? तो आप रूप गोस्वामी प्रभु, प्रभु जी हरी बोल, दूसरा पुजारी ढूंढ लो। मेरे इमरजेंसी कॉल आ गया। लेकिन पंकज आंगे प्रभु आरती करते रहे, हमने सुना ना कहानी, वो सांप ने फिर भगवान नरसिंहदेव की परिक्रमा की और फिर चला गया। तो गरुड़ गरुड़ बोलने पे वो सांप जा रहा था, लेकिन नीमाई ने उस सांप को पकड़ लिया और उसके ऊपर ऐसे लेट गए। वो सांप ने अपने कॉइल्स, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कॉइल्स मराठी में बेटाड़ा बोलते हैं ना, कुंडली, कुंडली बना ली। और नीमाई उसके ऊपर ऐसे लेट गए जैसे भगवान विष्णु अनंत शेष पर लेट जाते। थोड़ी देर बाद वह सांप चला गया। ये मैंने आपको चार लाइन में कहानी बताई, एक सांप आया, कुंडली बनाई, लेटा, फिर चला गया। लेकिन जो ये कहानी को सुनता है उसको जन्म मृत्यु का सांप नहीं काटता, कितना लाभ है। ऐसे ये सब लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, चोरों की लीला, दो चोर आए निमाई को ले गए, लेकिन भगवान ने ऐसा मोह दिया कि वापस वहीं पर आ गए। ये सब लीलाओं का वर्णन करते 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 अरे संन्यास लीला बोला उन्होंने। भगवान ने पहले विवाह किया, विवाह के बाद बांग्लादेश गए, फिर उनकी पत्नी का देहांत हो गया, फिर दूसरा विवाह किया विष्णु प्रिया से, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हो गई ईश्वरपुरी से, तब वो प्रेम के लक्षण पहली बार प्रकट करने लगे। महाप्रभु भगवान है, नित्यानंद प्रभु भगवान है, लेकिन वो भी भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट नहीं करते जब तक कि गुरु से दीक्षा नहीं लेते। चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव का नाम था ईश्वरपुरी। तो महाप्रभु जप करने में इतने मग्न हो गए, अब उनको पाठशाला की सुधि नहीं होती। कोई प्रश्न पूछता, ये व्याकरण है, ये श्लोक का अर्थ क्या होता है, कृष्ण। कोई पूछता ये धातु क्या है, कृष्ण। टाइम क्या है, कृष्ण। कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण। और 6 घंटे तक ऐसी क्लास चलती रही। किसी ने पूछा वर्णाश्रम का मीनिंग क्या, बोले सारे वर्ण और आश्रम का उद्देश्य है भगवान नारायण। और 6 घंटे बाद वो होश में आए, और होश में आने के बाद बोले आपको कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा। सब बोले आपने कुछ बोला ही नहीं सिवाय कृष्ण के। तो महाप्रभु बोले ठीक है आप दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लो, हम हमारे पास मत आओ, मैं तो कृष्ण ही बोलूंगा। सब बोले नहीं, ब्रह्मा जी भी अगर कोचिंग शुरू करते हैं हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम आपके इस पाठशाला में रहे। थोड़े दिनों बाद महाप्रभु ने देखा कि कुछ लोग तो प्रेम से कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग उनका आदर नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं संन्यास ले लूंगा। तो वो घर छोड़ के संन्यास ग्रहण किए। संन्यास लेने के लिए वो किसके पास गए, ये संन्यास गुरु केशव भारती। अभी केशव भारती के पास, अभी केशव भारती कैसे उनको दीक्षा देंगे। केशव भारती को मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन अब वो दीक्षा लेने आए हैं। तो महाप्रभु स्वयं केशव भारती के पास में गए, उनके कान में बोला कल रात को मुझे एक स्वप्न आया था, लास्ट नाइट आई हैड ए ड्रीम, और स्वप्न में मुझे किसी ने संन्यास मंत्र दिया। क्या ये करेक्ट मंत्र है, ये करेक्ट है ये मंत्र, ऐसा ही है। बोले हाँ ये करेक्ट है, आओ मैं आपको देता हूं अब ये मंत्र। तो महाप्रभु ने केशव भारती को संन्यास मंत्र दिया और केशव भारती ने महाप्रभु को दिया, क्योंकि कृष्ण सबके गुरु हैं। फिर संन्यास लेने के बाद एक्चुअली जो व्यक्ति उनके बाल शेविंग कर रहा था ना, उसका हाथ भी कांप रहा था। ये सब लोग रो रहे हैं, सब बोले अरे क्यों बाल काट रहे हो, भगवान के बाल बहुत सुंदर थे, हमारे तो सुंदर नहीं होते फिर भी हम थोड़ा बहुत रखते हैं, है ना। हम जनरली बहुत कम लोगों के बाल में गुलाब के फूल की सुगंध आती होगी, है ना, तभी, लेकिन हम आर्टिफिशियली लगाते हैं। भगवान के बाल तो इतने सुंदर थे, फिर भी पूरा हेड शेव कर रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं मत काटो मत काटो, और वो भी सोच रहे हैं क्या करूं, इतने सारे लोग नाराज हो रहे हैं। महाप्रभु बोले आप ठीक से काटोगे तो आपको वैकुंठ ले जाऊंगा, हरे कृष्ण। तो इस तरह ट्रांसेंडेंटली ब्लैकमेल नहीं, व्हाइट मेल करके उनको कन्विंस करके हेड से। अब केशव भारती सोचने लगे कि मैं क्या नाम रखूं, अगर मैं इनका नाम रखूंगा भारती, जनरली क्या होता है गुरु के नाम का जो लास्ट नाम होता है वो शिष्य का भी होता है, सरनेम में होता है। कोई गुप्ता है उसके बेटे का नाम भी गुप्ता होगा, कोई जोशी है तो बेटे का नाम भी जोशी है, कोई पात्र है तो बेटे का नाम भी पात्र का महापात्र हो जाएगा। तो क्या नाम रखा जाए, मैं नहीं चाहता कि लोग बोलें कि केशव भारती के शिष्य हैं, मैं नहीं चाहता। इसीलिए उन्होंने कुछ सोचा क्या नाम रखूं, आप पूरी दुनिया को कृष्ण चेतना प्रदान करेंगे, इसीलिए आपका नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। अभी यहां तक वृंदावन दास ने किताब में लिखा, फिर संन्यास लेने के बाद महाप्रभु पूरी जा रहे हैं उतना लिखा, फिर लिखते लिखते देखा अरे किताब का साइज बढ़ गया, हार्ड डिस्क फुल, इन्होंने बस वही बंद कर दिया, बोले खत्म, दैट्स ऑल, एब्रप्ट एंड। संन्यास के बाद की का वर्णन ही नहीं है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, आज जिसका हम चिड़ादई फेस्टिवल मना रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने भगवान के संन्यास के बाद की लीलाओं को स्वयं देखा था, और सारे भक्तों ने निवेदन किया कि आप इतने भाग्यशाली हो, आपने भगवान की लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है, आप हमें भी थोड़ा सा कुछ सुनाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी मन में सोच रहे थे मैं आत्महत्या कर लूंगा, जिसको भगवान से गुरु से प्रेम होता है तो उसके संग के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक्चुअली आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन भक्तों ने बोला आप कथा सुनाओ, तो कथा सुनाने लगे 3 घंटे रोज। अभी हम तो सुबह 1 घंटा किया और अभी 1.5 घंटा यानी 2-2.5 घंटे हुए, वो भी बीच में हम लोग शीरा दही शीरा दूध, कुछ लोग खिचड़ी, कुछ लोग दाल चावल सब, है ना। लेकिन ये 3 घंटे नॉन स्टॉप कथा कर रहे थे एवरी डे, और उनमें जो कथा सुनने वाले थे उनमें से एक महान भक्त थे जिसका नाम था कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उनको भक्तों ने बाद में रिक्वेस्ट किया कि आप तो भगवान की लीलाओं को सब नोट्स बनाए, आप एक किताब लिखो, और उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम हो गया बाद में चैतन्य चरितार्थ। अब वृंदावन दास ठाकुर ने किताब लिखा था, उसका नाम था, पहले चैतन्य मंगल था उसका, और इधर और एक भक्त थे जो श्रीखंड में रहते थे जिनका नाम था लोचनदास ठाकुर। लोचनदास ठाकुर वही भक्त हैं जिन्होंने बहुत सुंदर वैष्णव भजन लिखा है, आपने भजन सुना है ये लोचनदास ठाकुर का, परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शेरो मणि केवल आनंद कंद। ये जो भजन लिखा गया है ये लोचनदास ठाकुर लिखा है। तो लोचनदास ठाकुर ने क्या किया, भगवान की किताब के बारे में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ कविता के रूप में, पोएट्री के रूप में, और उनकी किताब का नाम रखा गया चैतन्य मंगल, और वृंदावन दास ठाकुर की किताब का नाम रखा गया चैतन्य मंगल। तब वैष्णव में आपस में मीटिंग हुई कि दोनों किताब का एक ही नाम है, तो फिर क्या करें। नहीं अभी कोई बोलेगा प्रभु जी एक डिवोटी को बुलाओ जिसका नाम है संदीप, दो दो संदीप है, तो कैसे पता चलेगा। तो भक्तों ने निश्चय किया कि वृंदावन दास ठाकुर ये व्यासदेव के अवतार हैं, इसीलिए वो व्यासदेव के अवतार हैं, इसलिए इनके पुस्तक का नाम रखना चाहिए चैतन्य भागवत। तो 3 ग्रंथ हो गए, चैतन्य भागवत जिसके लेखक हैं वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य मंगल जिसके लेखक हैं लोचन दास ठाकुर, और चैतन्य चरितामृत जिसके लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो आदि लीला मध्य लीला और अंत्य लीला है। चैतन्य भागवत में मध्य लीला तक भगवान के सन्यास के पहले की लीला है, और अंत्य लीला में सन्यास के बाद की लीला है। चैतन्य चरितामृत में अलग है, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में सन्यास तक है और मध्य में सन्यास के बाद की लीला है। तो हमारा जो क्लासेस है मुख्य चैतन्य चरितामृत पे होगा, कोई कोई सेक्शन चैतन्य भागवत से भी लिए जाएंगे, क्योंकि चैतन्य चरितामृत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया है, हालांकि तीनों ग्रंथ महत्वपूर्ण है। तो ये बैकग्राउंड के साथ ये 3 लेखों का परिचय, मैं ये कथा की शुरुआत करूंगा। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हमें वैष्णव की वंदना करनी चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। हम लोग मैंने पहले किया था लेकिन अभी फिर से एक बार सब लोग आ गए हैं अभी, तो हृदय के साथ पूरा प्रणाम मंत्र बोलेंगे। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिनि गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सवेरे हमने जहां तक कथा की थी उसके आगे का भाग हम चर्चा करेंगे। आज किसी को याद है हमने कहां तक चर्चा की थी? आज सवेरे रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हो गया। यस चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। नहीं, आपको कृष्ण की कृपा मिली, भगवान ने आपको बाहर निकाल दिया। कहां से बाहर निकाल दिया? एक गड्ढा जहां पे लोग गंदे मलमूत्र विसर्जन करते, यहां तक हमने सवेरे पढ़ा था। अगर आपके पास किताब है तो आप या मोबाइल में ऑन कर सकते हैं। जय जय अध्याय नंबर 6। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। यह है छठा अध्याय और श्लोक नंबर 200 तक हो गया था, 201 अगर आपके मोबाइल में है, नहीं तो आप सुन सकते हैं। ये भी आप शेयर कर लीजिए, ओपन इट फॉर शेयर विद 2-3 डिवोटीज। अगली बार सब लोग अपनी पुस्तक लेकर आइए चैतन्य चरितामृत। हम लोग आज तो रघुनाथ दास का शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज कल तिथि थी। अगली बार आपको विषय बताया जाएगा और थोड़ा पढ़ के आएंगे तो और अच्छा रहेगा, वो ईजी होगा स्टडी करना। चैतन्य चरितामृत अगर किसी के पास नहीं है तो आप श्रीराम प्रभु को नाम दे सकते हैं, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। श्लोक नंबर 201 हो गया, उसके बाद वाला 201। रघुनाथ तेरा क्षीणता मालिन्य देखिया स्वरूपे रह कहे न प्रभु कृपा रद्र चित्त हैया। रघुनाथ दासेर क्षीणता मालिन्य देखे। जब रघुनाथ दास की गरीब कमजोरी को देखा तो महाप्रभु बोले स्वरूप दामोदर को कि हाथ पकड़ के स्वरूप दामोदर को बोला, स्वरूप आज से ये आपके बेटे हैं, आज से आपके सेवक हैं, आप ही इनका ख्याल रखो और इसको अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखो। आज से मेरे तीन रघुनाथ हो गए। पहले एक रघुनाथ थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दूसरा है रघुनाथ वैद्य और तीसरा है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये जो भट्ट रघुनाथ है इनका भी एक क्वालिटी था कि वो किसी वैष्णव में कभी दोष नहीं देखते, कोई गलती भी होती तो वो बोलते हैं कि ये भगवान को ठीक कर देंगे। अभी हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे। एत कही रघुनाथे रहस्त धरिला, स्वरूपे रहस्ते तारे समर्पण कैला। भगवान ने उनका हाथ लेकर स्वरूप दामोदर को सौंपा, स्वरूप ये आपके सेवक हैं, आपके बेटे हैं, आप इनकी देखभाल करो। ऐसे हम जब दीक्षा लेते हैं तब हम परंपरा से जुड़ जाते हैं। जब दीक्षा लेने का मतलब है अभी सारी जिम्मेदारी गुरु स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चार नियम पालन करने, 16 माला जप करने, ये शिष्य का कर्तव्य है और फिर गुरु जिम्मेदारी लेते हैं उसके भगवत धाम जाने का। कई बार भक्तों को गुरु से बहुत प्रेम होता है लेकिन गुरु की आज्ञा से प्रेम नहीं होता। वो ऐसे कि डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका दवाई पसंद नहीं है मेरे। जैसे मेरे मित्र एक बड़े हॉस्पिटल में, उनको एक्चुअली डेंगू हो गया था, तो डेंगू होने से बहुत तकलीफ थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, और एक महीने तक हॉस्पिटल में तो ठीक नहीं हुए। तो मैंने उनको पूछा, आप एक महीने से ठीक नहीं हुए, आप डॉक्टर से मिलते हैं? हाँ डॉक्टर तो रोज मिलते हैं मेरे को, उनका कोट देख के इतनी खुशी होती है, उसके ड्रेस देख के, कितने फर्स्ट क्लास डॉक्टर है, MD है वो। बोला बहुत अच्छा, फिर अब ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टर से मिलते हो? बोलते हाँ। उनकी दवाई लेते हो? वो मत पूछे, वो मुझे पसंद नहीं है। डॉक्टर साहब आप कितने अच्छे, आपको देख के ही मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम गुरु से बहुत प्रेम है, लेकिन गुरु की आज्ञा से प्रेम होना चाहिए। और हर गुरु की आज्ञा है कीर्तनीय रविवारी हरि, नहीं कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के मन में बहुत दया की भाव थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले गोविंदा, भगवान के सर्वेंट का नाम था गोविंदा, गोविंदा ये बहुत दूर से आए हैं, ये 400 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, आप इनको अच्छा प्रसाद खिलाओ, बहुत दिनों से उन्होंने उपवास रखा है। रघुनाथ दास को स्वामी बहुत नम्र फील कर रहे थे। भगवान बोले जाओ पहले समुद्र स्नान करके आओ। जगन्नाथपुरी में यह समुद्र है ना, वो भी तीर्थ है। आपको मन में क्यों वो तीर्थ है? वैसे समुद्र तीर्थ होता ही है क्योंकि सारे पवित्र नदियां समुद्र में जाती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में जो तीर्थ है समुद्र, उसको महातीर्थ बोलते हैं। यस भगवान प्रभु, वाई इज इट कॉल्ड महातीर्थ? जोर से बोलिए। हरिदास ठाकुर के वहां पर स्नान कराया गया था। देखिए भगवान का कितना विडंबना, आपने देखा हरिदास ठाकुर की समाधि? कितने भक्तों ने देखा है, याद है? कितने भक्तों ने आनंद बाजार देखा है? हाँ ये सब ने देखा है। यस, तो हरिदास ठाकुर की समाधि है, उसके बाजू में समुद्र है, देखा आपने? वहां पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास को देह त्याग करने पे ले गए और उनके शरीर को स्नान कराया, अपने हाथों से डांस कर रहे थे। जनरली ऐसा होता है किसी अगर डेड बॉडी को देखा भी हो तो अपवित्र माना जाता है, कोई लाश को छूता नहीं है। ये भगवान डांस कर रहे हैं एक वैष्णव की बॉडी को लेकर, भगवान दिखा रहे हैं मेरे भक्त मेरे को प्रिय हैं, उनका देह भी प्रिय है। एक प्योर डिवोटी का जो देह होता है ना वो भी दिव्य होते हैं। प्रभुपाद जैसे जब शरीर छोड़े, उनको जलाया नहीं उनके शरीर को, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की समाधि बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी भी ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, और जो डिवोटी नहीं है वो जीवित भी है, वो लाश के समान है। समझ में आया आपको? जो भक्त नहीं है वो अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो वो चलते फिरते मुर्दे हैं, मूविंग कॉप्सिस, मूविंग डेड बॉडीज, बड़ा डेंजरस है नहीं, अगर कोई चलता फिरता लाश। भागवत में लिखा गया कि अगर कानों में हरि कथा नहीं जा रही तो कान क्या है, सांप के बिल के समान। जीभ से अगर हम हरे कृष्णा नहीं बोल रहे तो वो मेंढक के समान, मेंढक आवाज करता है ट्रर ट्रर, क्या करता है उससे, सांपों को बोल देता है प्रसाद इज रेडी। इसीलिए हरिदास ठाकुर का बॉडी दिव्य है क्योंकि हमेशा हरि नाम ले रहे। वैष्णव पवित्र होते हैं चाहे वो शारीरिक रूप से हो या वाणी के रूप में। तो महाप्रभु ने स्नान कराया उनको और स्नान करने के बाद बोला यही तो महातीर्थ है, ये महातीर्थ हो गया। अब आप देखिए जगन्नाथपुरी में इलाका है, यहां पर हरिदास ठाकुर की समाधि के पीछे समुद्र है, वहां पे सब प्रकार के लोग आते हैं, मानव दो पैर वाले जानवर घोड़ा ऊंट सब जाते हैं वहां से, है ना, और सब लोग स्नान करते हैं वहां पे। उनको पता नहीं चलता, हो सकता है मछली भी खा रहे हो लेकिन फिर भी स्नान कर लेते हैं, उनको कृपा मिल जाती है। तो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु है, भगवान चैतन्य उससे भी ज्यादा दयालु है। दोनों में कौन ज्यादा दयालु है, जगन्नाथ या गौर नेताई, हु इज मोर मर्सीफुल। हम वोट लेते हैं, कितने लोगों को लगता है कि जगन्नाथ ज्यादा दयालु है, कितने को लगता है गौरंगा महाप्रभु ज्यादा दयालु है, कितने को लगता है कृष्ण दयालु है। आप सब गलत वोट दे रहे हो क्योंकि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ एक ही है। हरिदास ठाकुर के यहाँ पे हमें बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ को बोल रहे हैं इनको ले जाओ इनको प्रसाद खिलाओ, क्योंकि भगवान को भी चिंता है। जैसे एक पिता को होती है अरे मेरा बेटा स्कूल गया और अभी शाम तक वापस नहीं आया, टिफिन भी नहीं लिया, कितना चिंता होगी। भगवान को चिंता है, बोले रघुनाथ को लेकर जाओ इनको समुद्र स्नान के बाद इनको प्रसाद ग्रहण दो। रघुनाथ स्नान करके आए फिर उनको महाप्रसाद दिया। रघुनाथ बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बोले मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, जगन्नाथ का प्रसाद भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद खाएंगे तो डबल प्रसाद हो जाएगा, महाप्रसाद और महा महाप्रसाद, महास्क्वेर्ड प्रसाद, महाक्यूब प्रसाद, है ना। तो रघुनाथ दास प्रसाद खा रहे थे एक दिन दो दिन पांच दिन तक, छठे दिन आर दिन है ते पुष्प अंजलि देखिया सिंह द्वारा खड़ा रहे भिक्षा ला किया। कहां पर है रघुनाथ, रघुनाथ कहां पर है, जगन्नाथपुरी में एक दरवाजे को बोलते हैं सिंह द्वार, यानी चार दरवाजे हैं, सिंह द्वार और हस्ती द्वार, व्याघ्र द्वार, अश्व द्वार। सिंह द्वार यानी शेर, और फिर हस्ती द्वार यानी हाथी, व्याघ्र द्वार यानी व्याघ, और अश्व यानी घोड़ा। ये परिक्रमा की आपने जगन्नाथ मंदिर के, तो चारों दरवाजे होते। तो ये सिंह दरवाजा जो है मेन दरवाजा है, तो सिंह दरवाजे के पास खड़े रहते थे, और जब पुष्पांजलि होती शाम को तो उस समय लोग दर्शन के लिए जाते, और जो आते आते व्यक्ति थे वो उनको दान देते, वह खड़े रहते थे, भिक्षा भिक्षा मांगते भी नहीं थे, और लोग अपने आप आके देते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनको देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका मूड क्या था, सर्व दिन करे न वैष्णव नाम संकीर्तन, स्वच्छंद करे न जगन्नाथ दर्शन। क्या है, वो पूरा दिन जगन्नाथ का दर्शन करते, फिर थोड़ी भूख लगी यहाँ पे प्रसाद ले लेते। ऑफकोर्स ये लाइफस्टाइल बहुत एडवांस डिवोटी के लिए, हम नकल नहीं कर सकते, वो किसी बंधन में नहीं थे। केहो छत्र मांगी खाए जेब किचु पाए, केहो रात्रि भिक्षा लागी सिंह द्वार रहे। कोई छत्र में खाते, छत्र मतलब छत्र क्या बोलेंगे, जहां पर मुफ्त में प्रसाद बांटा जाता है वहां प्रसाद ले लेते, और कुछ लोग सिंह दरवाजे के बाद प्रसाद लेते। और अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 220 आपके पुस्तक में 220, महाप्रभु भक्त गणेरा वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है गौर भगवान। एक दूसरा माइक है क्या, वन है, पढ़ी ट्रांसलेशन पढ़िए इसका।
Renunciation is the basic principle sustaining the lives of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees. Seeing this renunciation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, is extremely satisfied.
हाँ, हिंदी में अनुवाद क्या होगा इसका? Renunciation is the basic principle. ये वैराग्य है, ये मूल सिद्धांत है महाप्रभु के भक्तों का, और ये वैराग्य देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए. तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, शुद्ध हो या अशुद्ध व्यक्ति हो, यदि वो ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के व्यवहार को समझ सकेगा. महाप्रभु के भक्त किसी प्रकार के भौतिक भोग में आसक्त नहीं होते, वे इंद्रिय भोग को त्याग करके भगवान की सेवा में लगे रहते और बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान की सेवा में लगे रहते, इसलिए भौतिक परिस्थिति में इसको बाधक नहीं बनती. सामान्य लोगों को भक्तों की प्रवृत्ति को समझने में कठिनाई होती है, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रशंसा करते. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यही चैतन्य महाप्रभु पहले रघुनाथ दास गोस्वामी को डांट रहे थे, डोंट बिहेव लाइक अ मंकी, मरकट वैराग्य मत करो. लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए. क्यों? कि उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी गृहस्थ आश्रम में थे. तो महाप्रभु दिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम का पालन करना जरूरी है, रासाभास नहीं होना चाहिए. अगर कोई गृहस्थ है और वो घर घर जाकर भिक्षा मांगता है तो बड़ा अजीब लगेगा, और कोई सन्यासी है और अगर वही वो खुद से ही अपने आप से ही, एक्चुअली सन्यासी मतलब खुद का प्रसाद बनाना ही नहीं होता, सन्यासी को भिक्षा मांग के लेना होता है. कोई सन्यासी है और बहुत अपने आप से खरीदी करके गोविंददास में पिज्जा खा रहे तो कभी कभी अलाउड भी है, मना नहीं है, लेकिन अगर वो रेगुलर फीचर हो जाता है तो वो ऐसा भास हो जाता है. तो हर वर्ण और आश्रम के अनुसार ड्यूटी से रघुनाथ दास गोस्वामी पहले गृहस्थ थे तो भगवान बोलते ज्यादा वैराग्य मत बनो, लेकिन अभी वो सन्यासी हो गए, भगवान बोले यस वेरी गुड, अभी आपका वैराग्य देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही. तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन बोले, रघुनाथ दास भाला कैला बहुत अच्छा किया. क्या करना चाहिए वैरागी को, ये अगले श्लोक में बताया गया 223 में, 223, ये बहुत सुंदर श्लोक है. वैरागी करिबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाइया करे जीव जीवन रक्षण.
A person in the renounced order should always chant the holy name of the Lord. He should beg some alms to eat and he should sustain his life in this way.
हाँ, सन्यासी क्या करना चाहिए? हमेशा नाम लेना चाहिए और भिक्षा मांगना चाहिए. अगला श्लोक, वैरागी है जेबा करे पर अपेक्षा, कार्य सिद्धि नाही कृष्ण करे न उपेक्षा.
A bairagi, a person in the renounced order, should not depend on others. If he does so, he will be unsuccessful and he will be neglected by Krishna.
यहाँ बताया गया सन्यासी should not depend on others, दूसरे पे निर्भर नहीं होना चाहिए. मतलब कोई व्यक्ति मदद करे तो ठीक है, लेकिन ये नहीं समझे कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, भगवान पर निर्भर रहना चाहिए. कौन सा उदाहरण है एक भक्त का, जो कुछ मांगते भी नहीं थे, बस भ्रमण करते रहते, कोई प्रसाद दे दे तो खा लिया, कोई मिल गया तो महाफीस्टे गोविंदे, नहीं मिले तो फास्ट गोविंदे. कौन थे? माधवेंद्रपुरी. यस, कहाँ पे रहते थे माधवेंद्रपुरी? कहाँ रहते थे माधवेंद्रपुरी? हाँ, और घूमते रहते थे गोवर्धन में, कभी कभी हर समय नहीं रहते थे. कहाँ रहते थे? रेमुना में. यस, वो हमेशा भ्रमण करते रहते थे, लेकिन वो गोवर्धन के पास बैठे हुए थे परिक्रमा करके. वो कौन सा कुंड था? गोविंद कुंड. गोविंद कुंड में क्या लीला है? गोविंद कुंड नाम कैसे पड़ा है? आप में से कितने भक्तों ने देखा है गोविंद कुंड? गोविंद कुंड में क्या लीला हुई थी? यस, भगवान का अभिषेक किया था, इसलिए उनका नाम हो गया गोविंद कुंड. तो माधवेंद्रपुरी बैठे हुए थे और धीरे धीरे जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. और एक बालक आया, बाबा जी आप भूखे क्यों बैठे हो, ये लो दूध लो. वो बालक कौन था? हाँ, अभी तो मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा. माधवेंद्रपुरी को नहीं मालूम था, आपको कैसे पहले मालूम पड़ेगा? अब ज्यादा स्मार्ट बन गए जास्ते श्याण वो बालक को देख के माधवेंद्रपुरी की भूख चली गई। कभी कहते हैं ना कोई जैसे ड्यूटीज, जैसे आज ड्यूटीज का कितना सुंदर श्रृंगार था। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं, पूना में रह रहे हैं, यहाँ के ड्यूटी वर्शिप का स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे इतने ब्यूटीफुल ड्यूटीज हैं, ऐसा लगता है बस देखते ही जाए, यस एब्जॉर्ब्ड। तो माधवेंद्रपुरी के सामने ड्यूटीज नहीं, साक्षात कृष्ण है, तो कैसा लग रहा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते, करे भी मत, क्योंकि आपकी कल्पना से परे है वो, भगवान के कौन कल्पना कर सकते हैं। तो देख रहे थे ऐसे, कौन है ये बालक, कौन है बालक, पूरी लो दूध लो, आप कौन हो, बताया नहीं मेरा नाम क्या, बोले मैं ग्वाला हूँ, ग्वाला मैं इधर ही रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, या तो कोई मांग के खा लेता है, जो नहीं मांगता है तो मैं लेकर आता हूँ। मेरे को कुछ माता जी ने बोला आओ कुएं में से पानी निकालने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये देखो एक बाबा जी बैठे हैं, मैंने इसलिए दिया, आप जल्दी से पी लो, फिर मैं लौट के आऊंगा और बर्तन लूंगा। तो माधवेंद्रपुरी प्रसाद लेने के बाद वेट कर रहे थे, थोड़ी सी नींद आ गई, और नींद में भी जप कर रहे थे, हमारा उल्टा होता है, जप में भी नींद हो जाता है। ऐसे मैंने बताया ना, एक बार एक दिन में तीन बार प्रसाद, या तीन दिन में एक बार प्रसाद, है ना, दोनों परफेक्ट हैं। तो इनको नींद आ गई, और फिर नींद में इनको एक स्वप्न आया, क्या स्वप्न आया ये सब सबको मालूम है, यस कौन आया स्वप्न में, कृष्ण स्वयं, बोले मुझे बाहर निकालो, मुझे गर्मी लग रही है, वो देखो झाड़ियों के बीच में मैं हूं, मैं वेट कर रहा हूं कब माधवेंद्रपुरी आएंगे। तो मैं ये कहानी में बता रहा हूं कि कैसे माधवेंद्रपुरी इसे एग्जाम्पल थे, वैरागी जो है किसी अपेक्षा नहीं करना, एक्सपेक्टेशन से दुख होता है, आशा ही परम दुख, निराशा से परम सुख। इस मटेरियल वर्ल्ड में दुख का कारण क्या होता है, कोई ना कोई चीज चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। जैसे भी आज क्योंकि पहली बार प्रोग्राम है, तो प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं किया है, तो आपको बताया भी नहीं गया, इसलिए आशा भी नहीं है, अभी अभी आपको पहले बताया नहीं था। लेकिन रेद्धिपति प्रभु ने रिक्वेस्ट करके एक थोड़ा सा हलवा का अरेंजमेंट किया, तो आप अरेंजमेंट आप नहीं आशा करके हलवा मिल जाए तो खुशी हो जाती है, नहीं एक्सपेक्ट करके आओगे कि पूरी सब्जी खीर होगा, फिर बोले प्रभु जी कुछ नहीं मिला, अगले प्रोग्राम में नहीं आएंगे। आज मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था, मेरे से पूछा कितने लोग आएंगे, मैंने बोला 25-50 आ जाएंगे, रेवतीपति पर बोले कि नहीं ज़्यादा आएंगे, तो इस बार और आप लोग आए मुझे खुशी हुई, यार अरेंजिंग समथिंग ना, हलवा वो भी हलवा उन्होंने खाली 50 लोगों के लिए बनाया था, और मैंने अभी तुरंत मैसेज भेजा कि 50 नहीं 200 लोगों के लिए बनाइए, तो प्रोग्राम ख़त्म होने तक बन जाएगा ना। सर ये फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हो रहा है, और मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है, राधेश्याम प्रभु के इंस्पिरेशन से, प्रभुपाद के आशीर्वाद से इतने सारे डिवोटी जा रहे हैं, और इस बार मैं अलग अलग टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि हमें प्लान नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे, बिगिनिंग फ्रॉम विल स्टार्ट फ्रॉम आदिलीला, आदिलीला से 13वें अध्याय से, क्योंकि मैं ज़्यादा कथा पर जोर दे रहा हूँ, चैतन्य कथा अमृत, चैतन्य फिलोसॉफी अमृत नहीं, खाली कथा अमृत। तो जिस इस अध्याय में कथा है, मतलब क्या है, बाकी सब भी जरूरी है, राइस दाल वो सब हम रखेंगे, लेकिन खाएंगे खीर खाली, और बिकॉज उससे ज्यादा इंटरेस्ट जागृत होता है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो ये माधवेंद्रपुरी का जो जीवन है वो ऐसा था, नो एक्सपेक्ट, जैसे जॉब में भी आप घर में भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, किसी से कुछ आशा मत करो, कोई आपको हेल्प करे तो खुशी होगी। फैमिली में क्या होता है, हम आशा करते हैं मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, हेल्प करेंगे, फिर वो बाई चांस ब्रह्मचारी बन जाते हैं, दुख हो जाता है, तो आशा ही नहीं करना चाहिए, है ना, तो से भगवान की सेवा में, दिस इज हाउ वी शुड लिव। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, वो चंदन, भगवान बोले जाओ चंदन लेकर आओ, तो माधवेंद्रपुरी चल पड़े चंदन लाने के लिए, इमेजिन कितना होगा, वृंदावन से कहाँ गए वो चंदन लाने के लिए, जगन्नाथपुरी तक कितना किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर होगा, नहीं आप तो पुरी से ही हैं, कितना दूर है, 1200 किलोमीटर है, प्रभु जी चल के गए थे वहां पे। आपको कैसे मालूम 1200 है, गूगल तो देखो अभी गॉड सामने है और गूगल को आश्रय ले रहे हैं। लेकिन गूगल तो रोड से दिखाएगा ना, तो उस समय जंगल था। ये प्रभु जी आईटी इंजीनियर हैं, इसलिए अंत समय में बोलेंगे ना कहाँ आपका जीबीट बैग, कहाँ, बोले गूगल के पास। एक्चुअली मैंने भी एक बार गूगल में टाइप किया था, जैसे होता है ना गूगल मैप्स में, फ्रॉम प्रेजेंट लोकेशन टू गोलोक वृंदावन टाइप किया, तो बहुत देर तक घूमता रहा, फिर आया नो रूट्स फाउंड। फिर मैंने एक सीनियर डिवोटी को बताया, प्रभु ये नहीं आया, तो बोले आपको लिखना चाहिए उसमें, गूगल में प्रोग्राम डालना चाहिए, ऐसा कोई टाइप करेगा ना तो उसमें नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर का एड्रेस दे देना चाहिए। क्योंकि वहां वो जाएगा तो उसको हरे कृष्ण मंत्र मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, पूरा नहीं द्रोण कुछ भी मिलेगा। Then he will go back to God. Okay, now we'll read one more verse, verse number 225. Next time आप अपने पुस्तक लेकर आना, एक्चुअली हिंदी में डिस्काउंट में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम कॉस्ट में, यहाँ पे जैसे स्टॉल में 2500 होता है, तो कुछ सेट्स हैं जो डिस्काउंट में है श्री राम प्रभु के पास, तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी सबको कंसेशन मिल जाए, बिकॉज जो जो क्लासेज अटेंड कर रहे हैं बुक्स लेके आए तो अच्छा होता है, मोबाइल में क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है सर्च करना, जैसे अभी मैंने बोला 15 श्लोक बाद क्या होगा, तो अभी तो देख सकते हो मोबाइल में क्या इसे करते बैठे, और फिर कभी आगे चला जाता है, कभी कोई कॉल आ जाता है, तो बड़ा और लगेगा, अभी देखते नहीं सुखदेव गोस्वामी मोबाइल लेके बैठे हैं ऐसे ना, और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं रेंज नहीं आ रहा। बेटर टू टेक बुक्स, इवन आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते, जैसे इंग्लिश समझो करीब 1400 या 1500 रुपये का लेके महीने में 100 रुपये 200 रुपये दे के आप ले सकते हैं, और बस पढ़िए उसको सिंसियरली और आपका जीवन सफल होगा। ओके, हमारे पास अभी आधा घंटा और है, हम लोग ये अध्याय पूरा कर ले। नेक्स्ट वर्स, वैरागी है करे जीवार लालस, परमार्थ जाय आर है रसे रवश।
If a renunciate is eager for his tongue to taste different foods, his spiritual life will be lost and he will be subservient to the tastes of his tongue.
हाँ, यदि वैरागी क्या बन जाता है, जीभ के लालसा के लिए भोजन चखने में उत्सुक होता है, इसका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगा। ऐसे कई डिवोटीज भी होते हैं, वो डिसाइड करते हैं यहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है उधर भी हो रहा है तो कहाँ जाए, तो कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ? कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ? आप ऐसा ही करते हैं क्या? हाँ। नहीं, वो बेसिस नहीं होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कहाँ मेरी भक्ति में प्रगति होगी या कहाँ मेरे को समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, तो सच्चा कि जो समझ में आए वो ग्रहण करें। और अभी तो आजकल तो भगवान की दया से ऑनलाइन भी क्लासेज होते हैं, लेकिन एक है अगर क्लास हो रही है तो पर्सनली आना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ कई डिवोटीज क्लास में नहीं आते, मतलब क्या हुआ, बोले प्रभु जी हम ऑनलाइन सुन रहे थे, बरसाना बिल्डिंग में रह के ऑनलाइन सुन रहे थे। अब नीचे उतरो तो सामने टेम्पल है ना, तो लेक्चर में बताया जा रहा है कि मंदिर आओ और हम ऑनलाइन ही देख रहे हैं, है ना, तो क्या मैंने बोला ठीक है आप ऐसा करना, दोपहर का प्रसाद भी ऑनलाइन खा लेना है, तो पूरा पेट भी भर जाएगा, कोई खर्चा भी नहीं होगा, है ना। तो ये ऑनलाइन जो है ये तभी अच्छा है जब हम नहीं जा सकते, जैसे कोई डिवोटी बहुत दूर रहते हैं 10 किलोमीटर, तो उनके लिए ठीक है नहीं आ सके। मेरे को याद है परम पूज्य राधानाथ महाराज का, जब वो अमेरिका में सेवा करते थे न्यू वृंदावन में, मैं भी 1 साल रहा था न्यू वृंदावन में, तो जहाँ महाराज जी रहते थे उनको सेवा दी गई थी आरती की, राधा क्या नाम था वृंदावन नाथ, उनकी 6 बार दिन में आरती करते, 6 टाइम्स आरती ऑफरिंग, और वो एक पर्वत था, और प्रभुपाद जब आए, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो महाराज ये पर्वत पे हैं एक यहाँ रह रहे हैं, और दूसरा और एक पर्वत है जहाँ प्रभुपाद रहते, तो एक पर्वत से दूसरे पर्वत जाना आसान नहीं था, अगर प्लेन हो तो जल्दी जा सकते हैं एरोप्लेन, नहीं तो क्या होता है एक पर्वत नीचे उतर के ऐसे वैली, हिंदी में खाई बोलते हैं, मराठी में दरी बोलते हैं, नीचे आना फिर ऊपर चढ़ना करीब 4-5 किलोमीटर, फिर महाराज अपनी सेवा पूरी करके जाते थे, सुनते थे प्रभुपाद। एक दिन तो क्या हुआ 1976 में प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब थी, तो प्रभुपाद बोले मैं लेक्चर नहीं दूंगा, फिर भी डिवोटीज वेट कर रहे थे। अब प्रभुपाद का मूड बदल गया, बोले मैं दूंगा लेक्चर। अब उन्होंने 12वें स्कंद पे लेक्चर दिया, कलयुग के दोषों के ऊपर। 12वें स्कंद में एक चैप्टर है कलयुग के लक्षण, लावण्यम केश धारणम, बाल लंबे हो गए सुंदरता मानी जाएगी, और विवाह जो है वो खाली नाम के लिए होगा, कोई बॉन्डेज नहीं होगा, कलयुग के लक्षण। अब प्रभुपाद हंसते हंसते बोल रहे थे कि ये लंबे बाल है, ये हिप्पी मूवमेंट का लक्षण है, पहले से हिप्पी मूवमेंट शास्त्र में बताया गया था। लेकिन लास्ट में एक बहुत सुंदर श्लोक है, कले दोषे निधि राजन अस्तिरिये को महान गुणान, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। इसका अर्थ कौन कौन बताएगा? यस ऋषभ वाणी प्रू, प्लीज टेल व्हाट इज द मीनिंग। कलेर दोषी निधि राजन, व्हाट इज द मीनिंग इन इंग्लिश यू कैन से? कलयुग इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट, कलयुग दोषों की निधि है, इसमें एक महान गुण है। क्या महान गुण है? ओंकार गोपाल प्रभु। हाँ, कृष्ण नाम लेने से सारे दोष दूर जाते। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे को एक ही दुख है। क्या दुख था प्रभुपाद को? कि मेरे शिष्य जो है मेरी किताबों को पढ़ते नहीं जितना पढ़ना चाहिए। एक्चुअली ये जो महीने में एक बार हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यह है कि आपको थोड़ा आदत पड़ जाए चैतन्य चरितामृत पढ़ने की, फिर आप अपने आप से पढ़े। जैसे फ्री सैंपल होता है नहीं, जैसे आप कोई रसमलाई दोगे तो एक चम्मच फ्री मिलता है, आप और मांगोगे तो बोलिए ठीक है काउंटर पे जाओ और पेमेंट करो। ये फ्री पेमेंट फ्री काउंटर है, और बाद में आप घर में जाके आप और भी अच्छा तरह से पढ़ सकते। ओके नेक्स्ट श्लोक, वैराग्य कृत्य सदा नाम संकीर्तन शाक पत्र फल मूले उदर भरण। वैराग्य कृत्य सदा नाम संकीर्तन शाक पत्र फल मूल उदर भरण। कोई गैस करे इसका मीनिंग बिना देखे, क्या मीनिंग हुआ? यस प्रभु, इसका अर्थ समझ में आया? ठीक है, आप पढ़िए।
द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर इज टू चैंट द हरे कृष्णा मंत्र ऑलवेज।
ऑलवेज ड्यूटी क्या है डिवोटीज का? हरे कृष्णा ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा नाम लेना। हाँ,
he should satisfy his belly with whatever vegetable leaves fruits and roots are available।
हाँ, मतलब जो भी मिल जाए, चाहे हलवा मिल जाए या या जो खीर मिल जाए या शाक फल। आपको मालूम है कंदमूल क्या होता है? कंदमूल, अब मेरे किसी ने कंदमूल खाया? कंदमूल जो है वो जमीन के अंदर उगता है। आप में ऐसे किसी ने खाया? ये आप में से कितनों को उसका टेस्ट अच्छा लगता है? अरे कृष्ण, आपको अच्छा लगता है तो आप पूरे जन्म में ऋषि मुनि रहे होंगे। मैं एक बार गोवा में किसी डिवोटी के घर गया था, वो बोले आपको कंदमूल अच्छा लगता है क्या? मैंने बोला मुझे मालूम नहीं कैसा होता है, आप दीजिए। तो उन्होंने दिया और फिर मैंने खाया। वो कंदमूल का टेस्ट ऐसा होता है कि जैसे सब्जी बिना नमक के हो, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है ना। फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने पूछा, प्रभु जी आपको कंदमूल कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छा। ठीक है, हम और भेजते हैं आपके लिए। फिर तीसरी बार मैंने बोला, प्रभु जी अच्छा बहुत है लेकिन और मत भेजिए। तो बट यहाँ पे लिखा है शाक पत्र फल मूल, मूल मतलब कंदमूल, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। एक भक्त को ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छा खीर मिल रहा है मना करना, कभी कभी मिल जाए तो ले लेना, लेकिन डिमांड नहीं करना। अगर बहुत टेस्टी मिल रहा है बोलोगे नहीं नहीं मुझे खाली खिचड़ी चाहिए, नहीं तो वो भी ले लेना जो मिल जाए। भक्त को अपना स्पेशल मेनू नहीं, जो मिल जाए आसानी से उसमें संतुष्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्स जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बहुत ध्यान से बोलिए। जीवेर लालसा जय इति उति धाये शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। जीवेर लालसा, इसका मीनिंग क्या हो? जीवेर लालसा, जीवेर लालसा मतलब जीवा के लालच के कारण। इति उति धाय, इति उति धाय मतलब हाँ इधर उधर जा रहे हैं, कहाँ पे एक जगह वो जगह बेलपुड़ी चौक उधर ये गोविंदास सब अलग अलग जगह दे रहे हैं। हाँ? वो क्या है शिष्णोदर परायण। शिष्णोदर परायण मतलब परायण का मतलब क्या था, परायण परायण मतलब भक्त, नारायण परायण, कोई कृष्ण परायण, और ये क्या हो गया शिष्णोदर परायण मतलब उदर परायण, पेट का भक्त है। ये जनेन्द्रिय का भक्त है, कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो कृष्ण को प्राप्त करना है तो जीवा को कंट्रोल करना है। जीवा को कैसे कंट्रोल करना है तो बोलते हैं तीनों ठाकुर क्या बोलते हैं, तार मध्य जीवा, तार मध्य जीवाती लोभोमय सड़ुरमती ताके जेता कठिन। जीवा को वश में करना बहुत मुश्किल है। और ये जो प्रेयर है सबको याद रहती है, क्योंकि तो दिन में तीन बार हम बोलते ही हैं। बोलते हैं गुरु गुरुवाष्टक भूल जाए, गुरु पूजा भूल जाए, लेकिन तो इसमें इसमें आगे क्या बोले कैसे वश करते हैं, कृष्ण बड़ो दयामय करी बार जीव जाए स्वप्रसाद न दे। भगवान ने प्रसाद दिया किस लिए, जीवा को वश में करने। बोले प्रभु जी प्रसाद से जीवा कैसे वश में होगी, प्रसाद से तो जीवा और एजिटेट होगी। प्रसाद का ये गुण है क्योंकि भगवान को ऑफर किया है, इवन आप खा भी रहे हो तो भी आपको बंधन नहीं होगा। और कोशिश करना चाहिए, आज बताया था क्या, भाला ना खाई बा मतलब ज्यादा टेस्टी नहीं, सिंपल प्रसाद ज्यादा अच्छा, राइस दाल खिचड़ी कभी एक रोटी सब्जी, लेकिन बहुत ज्यादा अगर लिया स्पेशल आइटम्स तो दो लाभ होते हैं, एक तो भक्ति में बाधा आती है, दूसरा डॉक्टरों को थोड़ा सेवा मिल जाती है, आफ्टर ऑल वो भी इतने मेहनत से डिग्री प्राप्त किए हैं, उनको भी तो कोई कस्टमर्स चाहिए, तो उनकी सहायता हो जाती है। लेकिन आप उसके लिए मतलब कोई ना कोई अल्टरनेट उसके कस्टमर आ ही जाएंगे। आप ये मत सोचिए प्रभु जी डॉक्टरों पे दया करो, थोड़ा तो कुछ गड़बड़ खाना ही चाहिए। वी शुड नॉट बी ईगर फॉर दैट सर्विस। ओके अभी 15 मिनट बचे हैं, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। ये एक प्रश्न पूछते हैं वो स्वरूप दामोदर से। हाँ ये 232 रघुनाथ दास का प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि मोरा कर्तव्य मोई न जानी उद्देश्य अपनी श्री मुखे मोर कर उपदेश। रघुनाथ दास बोल रहे हैं कि मोर कर्तव्य, आप लोग थोड़ा थोड़ा बंगाली भी सीख जाएंगे। ये जो अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे ना, ये बंगाली बहुत इजी भाषा है, स्पेशली इसको मराठी हिंदी आता है तो बंगाली बहुत आसान है समझना। कि मोर कर्तव्य मतलब माजा कर्तव्य काय आहे, मेरा कर्तव्य क्या है। मुई न जानी, मैं नहीं जानता। अपनी श्री मुखे मोर उपदेश करी, अपने श्री मुखे मतलब आपके मुख से मुझे उपदेश करो। कौन बोल रहा है ये, हाँ किसको बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु क्या बोले मालूम है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनडायरेक्ट देखो, महाप्रभु यहां बैठे हैं, स्वरूप दामोदर यहां बैठे हैं, और रघुनाथ दास क्या कर रहे हैं, वो महाप्रभु के पास नहीं जाते, वो किसके पास जा रहे हैं, स्वरूप दामोदर के पास। तो स्वरूप दामोदर आए बोले प्रभु रघुनाथ इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज हिज ड्यूटी, वो पूछ रहे हैं उनका कर्तव्य क्या है बताइए। भगवान ने क्या जवाब दिया, नेक्स्ट लाइन, हासी महाप्रभु रघुनाथे रकोहिला। हासी हासी मतलब हंसते हुए, रघुनाथे र कहिला मतलब रघुनाथ ने बोला नहीं, रघुनाथ को बोला, किसने बोला, महाप्रभु। क्या बोले, तुम्हारा उपदेष्टा करी स्वरूपे र दिला। क्या बताया कि आपके उपदेष्टा, आपके काउंसलर या आपके गुरु कौन है, स्वरूप दामोदर। साध्य साधन तत्व शिख इहार स्थाने, साध्य और साधन इसका क्या मीनिंग हुआ, साध्य किसको बोलते हैं और साधन किसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए आपके ट्रांसलेशन में, साध्य साधन, साध्य मतलब गोल और साधन मतलब उसको प्राप्त करने का तरीका। आपको मालूम है पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र किसको दिया चैतन्य महाप्रभु ने, फर्स्ट टाइम फर्स्ट इनिशिएटेड डिवोटी तपन मिश्र, कहां पर दिया उसको, वो वाराणसी के रहने वाले थे लेकिन वहां पर नहीं दिया, हाँ ईस्ट बंगाल, यस you were also there. Yes, East Bank, one of the students of Nimai Pandit. Nimai Pandit अपने tour पे गए थे. जैसे you know कोई professors होते हैं, कभी कभी college में lecture देते हैं, कभी दूसरे college में जाके देते हैं guest lecturer. तो East Bengal में गए थे. और ये एक भक्त थे तपन मिश्र. ये कहाँ के रहने वाले थे तपन मिश्र? वाराणसी. और उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े थे और बहुत थरोली कंफ्यूज थे. पूरा खिचड़ी बना दिया था. चार वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, शंकराचार्य कॉमेंट्री पढ़ लिया, पूरा कंफ्यूज. और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान रास्ता दिखाओ. ये तो शास्त्र पढ़ने से पहले मैं ज्यादा सोबर था, अभी रास्ता ही नहीं मालूम पड़ रहा. भगवान के स्वप्नों में आए, ब्राह्मण के रूप में बोले, आप जाओ निमाई पंडित से मिलो. निमाई पंडित भगवान के अवतार हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे. हे प्रभु मैं कहाँ पर मिलूं? आप जाओ बंगाल में जाओ. और नवद्वीप में गए, मायापुर. वहां देखा महाप्रभु नहीं है. महाप्रभु के घर में उस समय कौन थे? उनके पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया, उनके माता का नाम था शची देवी. बोले कहां पर हैं? बोले वो ईस्ट बंगाल गए, ढाका बांग्लादेश. तो वहां पर गए और वहां देखा निमाई कोचिंग कर रहे हैं व्याकरण न्याय. और निमाई के क्लासेस में वो फेमस थे. जैसे आजकल मान लो कौन से क्लासेस फेमस है यहां पर कोचिंग में, पुणे में? चैतन्य. हाँ, ये तो हमारे ड्यूटीज का ही है, ये तो बेस्ट है ही, है ना. ये एक और एक चाटे भी है ना, चाटे. भक्ति नहीं है, खाली दिमाग चाटने के लिए चाटे. सॉरी. आप में से कोई जाता तो नहीं है ना वहां पर? कोई बात नहीं, गए भी तो भी मेरा अपराध माफ करना. मैंने बोला अगर भक्ति नहीं है तो ही, भक्ति के साथ है तो गए. मैं जब कॉलेज में पढ़ता था एक फेमस थे, उसका नाम था अग्रवाल कोचिंग क्लासेस, मुंबई में था. अपने नाम सुने अग्रवाल कोचिंग, IIT के लिए, आजकल JEE के लिए बहुत. तो निमाई के क्लासेस के लिए लोग विदेश से भी आते थे, मतलब विदेश यानी नॉट फॉरेन कंट्रीज बट अलग प्रदेश से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से. उनके जब क्लास पूरा हो रहा था, पहले जमाने में क्या होता था, कोचिंग में कोई ट्यूशन फीस नहीं होता था. आजकल तो क्या, पहले 10,000 पढ़ो फिर आप आओ, नहीं आओ कोई बात नहीं, आप नहीं आए तो भी बहुत अच्छा होगा. पहले क्या होता था, टीचर ज्ञान देते थे, फिर क्लास पूरी होने के बाद जब विद्यार्थी अपने आप आके बताइए, लो गुरु जी कुछ पैसे ले लो, कुछ सोना चांदी रख लो. आजकल ऐसा होता नहीं, आजकल पहले ही मांगते, क्योंकि टीचर को मालूम है विद्यार्थी का भरोसा नहीं. डिग्री लेके रफू चक्कर हो जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा. तो और विद्यार्थी को भी आपस में ना भरोसा नहीं है. पहले टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी आध्यात्मिक होता था, आजकल सब बिजनेस के ऊपर. तो महाप्रभु से सब लोग कपड़े दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, और ब्राह्मण बोले, भगवान बोले रुक जाओ मैं आपसे बाद में मिलता. फिर सबसे मिलने के बाद भगवान उसको अकेले में मिले. क्या बात है, क्या प्रश्न है? बोला कि मैं सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, चार वेद, 18 उपनिषद, रामायण, महाभारत, लेकिन मुझे ये दो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला. क्या दो प्रश्न है? व्हाट आर द टू क्वेश्चंस? यस ओंकार पंडित जी, पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या है, और साध्य और साधन, उसका तरीका क्या है? महाप्रभु बोले देखो मैं आंसर कर रहा हूं लेकिन कुणाला सांगू ने सीक्रेट. जीवन का लक्ष्य है कृष्ण से प्रेम करना, और उसको प्राप्त करने का तरीका है, मैं आपको मंत्र दूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये 16 नाम 32 अक्षर का महामंत्र है. ये आप किसी को भी बताना मत जब तक मैं बताऊं नहीं. और वो इतने खुश हो गए, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंत्र दिया, लेकिन अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता मायापुर, मैं वाराणसी नहीं जाना चाहता, वाराणसी तो मायावादियों का अड्डा है. मैं भी वाराणसी में 5 साल था, वहां पर अविद्या एकत्र किया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स अविद्या. अभी तो वाराणसी बहुत मटेरियल सुधार हो गया, हमारे मोदी जी वाराणसी से जीते हैं तो, बट उस समय काफी नॉट वेरी ऑर्गेनाइज प्लेस. तो मायावादी वहां रहते, मैं नहीं रहना चाहता. महाप्रभु बोले नहीं, मेरी आज्ञा वाराणसी जाओ. क्यों वाराणसी में भेजा उनको? कुछ साल बाद मैं संन्यास लूंगा और संन्यास लेने के बाद मैं वाराणसी में आऊंगा और मैं आपको मिलूंगा, इसलिए आप वापस जा। तो ये चीज आज के श्लोक में बताया गया, साध्य साधन, ये दो याद है। साध्य मतलब लक्ष्य, कृष्ण प्रेम, और साधन मतलब, साधन मतलब तरीका, और तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो साध्य साधन तत्व शिखर इहा स्थाने, बोलिए साध्य साधन तत्व शिखर इहा स्थाने, अमित नहीं जाने इहो यत जाने, अमी नहीं जाने इहो जाने, मतलब जितना मैं भी नहीं जानता उतना ये जानते हैं, कौन? स्वरूप दामोदर। तथापि अमार आज्ञा श्रद्धा यदि है, अमार ए वाक्य तबे करी है निश्चय। इसके अलावा, किताब के अलावा, जिन डिवोटीज को मोबाइल में भी अगर पॉकेट वेदा प्रभुपाद के बुक्स अगर आपको कॉपी करना हो, तो ओंकार गोपाल प्रभु या श्री राम प्रभु या कोई डिवोटीज, श्रीधर प्रभु एक्सपर्ट है, लेकिन डिवोटीज चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं। इसे सारे बुक्स आते हैं हिंदी में भी, हिंदी में चैतन्य चरितामृत तो नहीं आया, भागवतम आ गया, जो आप मोबाइल पे कर सकते हैं। अब बोलते हैं अमर आज्ञा यदि शुद्ध है, पढ़ो प्रभु ट्रांसलेशन, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन।
Nevertheless, if you want to take instruction from me with faith and love, you may ascertain your duties from the following words.
मैं आपको उपदेश करता हूँ, अगर आप बोल रहे मेरे से पता लगाना है तो मैं उपदेश करूंगा। अभी एक उपदेश शुरू होते, ग्राम्य कथा न न सुनी ब, बोलिए ग्राम्य वार्ता न कही ब, भाला न खाई ब, आर भाला न परी ब। ग्राम्य कथा का मतलब क्या है? ग्राम्य कथा फालतू बातें, प्रजल्प, अनवांटेड टॉक्स। ग्राम्य कथा न सुनी ब, न सुनी ब मतलब हाँ बोल, सुनना नहीं। और ग्राम्य वार्ता न कही ब, कही ब मतलब बोलना नहीं। अभी कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं प्रभु जी मैं तो सुनना नहीं चाहता था, ये बोल रहे थे, ये मेरे सीनियर डिवोटी हैं, कैसे मना कर सकते हैं, ये इन्होंने PhD की है फॉल्ट फाइंडिंग में, पूरा किस डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है, किस डिवोटी के क्या दोष हैं, बड़े रिसर्च की। हमें बोलना प्रभु जी आप सीनियर हो, लेकिन सॉरी मैं आप, मैं नहीं चाहता कि मेरे कान प्रदूषित हो, हरे कृष्ण मेरे को पॉजिटिव चीजें बताओ। एक्चुअली दुनिया में सबके अंदर दोष भी हैं गुण भी हैं। अगर आप दोष देखोगे तो आपके अंदर दोष आ जाएगा, अगर आप गुण देखोगे तो आपके अंदर गुण आ जाएगा। एक कहानी है, एक भक्त बता रहे थे, एक बार एक राजा बहुत अमीर थे और वो चाहते थे कि सबको प्रसाद बांटा जाए, तो जो भी आ रहा था उस व्यक्ति को वो गरम गरम, क्या बोलते हैं इसको, खीर पूरी हलवा, बोलने में क्या आता है, सब कुछ बोल सकते हैं कोई तो चीज रहेगी वो सब सर्व कर रहे थे, फीस्ट 10,000 लोगों का प्रसाद उसने स्पॉन्सर किया, अपने कुक को दिया, कुक ने अपने असिस्टेंट्स को बुलाया और सब बनाने लगे, सब एक लाइन में प्रसाद ले रहे थे। फिर एक व्यक्ति का जब टर्न आया, उस समय एक बड़ा पक्षी जो गरुड़ टाइप होता है, जिसको ईगल बोलते, ईगल क्या बोलते हैं मराठी में, घार, हाँ वो बड़ा पक्षी जो सांप को खाता है, सांप को खाता है, तो मरे हुए सांप को ले जा रहा था, मरे हुए सांप के मुंह से कुछ जहर टपक रहा था, कुछ ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन, और उसमें से एक के प्लेट में वो बूंद गिर गया जहर का, और अब वो जहर खाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु, कर्मों में नहीं था, अकाल मृत्यु हो गई। अब यमराज, यमराज का आप लोग जानते हैं ना, बहुत बार मिलोगे, नो प्रॉब्लम, अभी जो जब कर रहे तो यमराज का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है। तो यमराज जो है अभी सोचने लगे कि किसको ये फल दिया जाए, सांप को फल नहीं, सांप तो मर गया था उसका कोई दोष, पक्षी का भी दोष नहीं, वो तो मरे हुए सांप को ले जाए, जिसने परोसा उसने तो खाली खीर परोसा, उसने जहर नहीं डाला, और खाने वाले का भी दोष नहीं, राजा ने भी तो खर्चा दिया था प्रसाद का, जहर का स्पॉन्सर नहीं किया था, तभी किसको दोष दिया जाए। इतने में एक प्रभु जी जा रहे थे, देख उनको पता चला तो सबको बोला, ए राजा, ये राजा देखो ये लोगों को जहर दे रहा है, ये जहर दे रहा है, देखो ये मर गया इसके जहर के कारण। यमराज बोले इसको ये पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि दोष देख रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, आई सी फॉल्ट इन अदर्स बिकॉज आई एम हनीकॉम्ब्ड विद फॉल्ट्स. मैं दूसरों में दोष क्यों देखता हूं, मेरे अंदर दोष. एक उदाहरण देते हैं, सीव और इसको नीडल. सीव समझते हैं आप, सीव मराठी में क्या बोलते हैं, छाननी. हाँ, जिसमें बहुत सारे होल होते हैं. एक छाननी है और एक सुई है. नीडल, नीडल क्या बोलते हैं मराठी में, सुई. तो छाननी जो है सुई पे देखो, आपके अंदर होल है, होल देखो, छेद हो गया. उसको मालूम नहीं है कि मेरे अंदर इतने छेद है. एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे जो रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करते, मंगल आरती 4:30 बजे शंका बजाते, आरती भी करते, जपा करते, भागवत पढ़ते, फिर प्रसाद के बाद चैतन्य चैतन्य पूरा दिन कथा, पूरे डेडिकेटेड थे. और सामने एक वेश्या का घर था. वेश्या एक्चुअली उसके जानबूझ के नहीं, लेकिन पैसे के कारण वो बुरे काम में लगे. तो ब्राह्मण जो है वो हमेशा अपना काम तो करता, लेकिन बीच बीच में देख के सोचता, अरे कितने गंदा है, कितना गलत काम कर रही है. और वेश्या जो है अपना काम करते, लेकिन मन में सोचती है, अरे ये ब्राह्मण कितना अच्छा है, ये देखो ये जप कर रहा है, मेरा इतना सौभाग्य नहीं है, रोज गौलीला सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं. और से वो मन में प्रेस करते. हुआ क्या कि दोनों का बिल्डिंग आमने सामने था, एक भूकंप आ गया, दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई. और यमदूत और विष्णु दूत दोनों आ गए लेने के लिए. अरे आप गैस करिए, यमदूत किसको ले गए, ब्राह्मण को, और विष्णु दूत वेश्या को. जब यमदूत, अभी वेश्या ने तो कभी भागवत पढ़ा नहीं था, यमदूत ब्राह्मण जानते थे, देख के पहचान लिया, अरे ये यमदूत मेरे को आ रहे, अरे उसको दिख रहा था वो, देखो सामने विष्णु दूत आ रहे. तो यमदूत को बोले, अरे बोल तुमची चूक जाली है, मीन अवे. हाँ मैं नहीं, वो उसको मैं तो, अरे देखो इनिशिएटेड कंठी माला पहनी है. हाँ मैं तो आता हूँ, मैं तो इवन गौर कथामृत में भी आया हूँ, है ना. मेरे को छोड़ दो, उसको लेके जाओ. हमारा आपका लगता है एड्रेस, आईपी एड्रेस थोड़ा इंटरचेंज हो गया. तो यमदूत बोले, नहीं नहीं हम लोग ऐसी गलती नहीं करते, हमारा परफेक्ट सिस्टम है. आप यहाँ पर रह रहे थे लेकिन आप उसकी निंदा सोच रहे थे और आपका मन उधर था. वेश्या पाप जीवन में भी भागवत और चैतन्य चरितमृत के बारे में सोच रहे. तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर. शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर कॉन्शियसनेस. बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग. ओके, अभी 10 मिनट बचे, में थोड़ा फास्ट जाएंगे. नेक्स्ट श्लोक. और नेक्स्ट है, भाला न खाई ब, ज्यादा अच्छा नहीं खा. प्रभु आप बोले भाला नहीं खाई ब, अभी अभी तो फर्स्ट क्लास हम चीला दही खा के आए, ये पहले बोलना चाहिए था. नहीं, कभी कभी ले सकते हैं, हफ्ते में एक दिन जैसे टेम्पल में फीस्ट होता है तो ले सकते हैं. लेकिन रोज रोज जैसे आप घंटे 6-6 घंटे प्रसाद बनाने में लगा रहे हैं रोज, फिर जपा करने को टाइम ही नहीं होगा. सिंपल, जैसे अगर कोई फैमिली में रह रहे, एक बार राइस दाल सब्जी चपाती, सिंपल दिन में. वो भी ऐसे जरूरी नहीं कि 4-5 बार खाना ही है, 2 बार खा लिया तो बहुत है. कई लोग 3 बार लेते हैं मैक्सिमम. लेकिन कई लोग क्या, सुबह दोपहर शाम बीच में थोड़ा ये, बीच में फ्रूट चाट वगैरह सब, तो फिर वो भक्ति का पूरा चाट बन जाता है. तो जितना आप कम खाओगे, जैसे हमारे श्रीधर प्रभु हैं जिन्होंने एकदम प्रैक्टिकली, वो ब्रह्मचारी से भी कम, ब्रह्मचारी तो कम से कम 8 बजे लेते हैं, प्रभु जी अपनी सेवा में जाते हैं और 9:30-10 बजे आते हैं. प्रसाद ले लो, बोले नहीं मेरा जप बचा है, पहले जप कर लो, फिर बाद में जब कभी खा लिया तो. सिंपल जीवन, सिंपल ऐसे गृहस्थ डिवोटीज में कई उदाहरण है. हमारे बंसी गोपाल प्रभु जी है, वेरी ऑस्टियर, वेरी सिंसियर, यू नो ऑलवेज समटाइम जो इजीली मिल जाता है उसमें संतुष्ट. आश्रम कोई भी हो, हमको लाइफस्टाइल ऐसा रखना है कि भोजन कम और भजन ज्यादा. करेक्ट, भोजन ज्यादा, क्या बोला मैंने, दोनों एकदम सिमिलर लगता है. नहीं, एक भजन दोनों में एक ओ एक्स्ट्रा ज्वाइन करने से फर्क पड़ जाता है ना. तो क्या ज्यादा बोला, भोजन या भजन? भोजन नहीं है प्रभु, भोजन भजन. यस, एक्चुअली मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत डिवोटीज को बीमारियां हुई हैं ज्यादा खाने से. बहुत कम डिवोटीज हुए हैं जो बोले प्रभु चक्कर आ गया, क्यों कम खाने से चक्कर आ गया. कभी कभी होता है निर्जला के दिन एक डिवोटी हो गया था. बाकी जनरली बंगाली बोलते हैं खाइब कि न खाइब, न खाइब. अगर आपको डाउट है कि अभी क्या होता है, हम जब खाते हैं ना उसके बाद सिग्नल आता है भरने का, वो आधे घंटे बाद आता है. तब तक हम यू नो हम देखते हैं अभी तो अभी कोई लग नहीं रहा, जस्ट जिनको गौर भक्त प्रभु जी ने बताया, एक बार मैं ले रहा था, प्रभु जी बोले अभी मालूम नहीं पड़ेगा आपको, सिग्नल बाद में आता है, तब तक लेट हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं कई बार, है ना, ट्राई टू टेक लिटिल बिट, और आपका बॉडी एडजस्ट कर लेता है। ये ऐसा है कि अगर आपको दो रोटी की आदत है तो दो में चल रहे, और एक दिन आपने सोचा कि चलो मैं एक में ही काम चलाता हूँ तो एक में चल जाए, आपको चार की आदत तो चार ही हो जाता, धीरे धीरे कम करते जाने, अंत समय आएगा तब आप बोलेंगे ठीक है मैं पानी पी के शरबत पी के थोड़ा खिचड़ी खा के रह सकता हूँ, जब ये 60-70 उम्र हो गई तो कम करते। नेक्स्ट क्या लिखा है, भाल न परिब, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग भाल न परिब, हाँ बहुत ज्यादा अच्छे वस्त्र नहीं पहना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े को लेके कीचड़ में डाल के फिर पहन लो, प्रभु जी आपने बोला ना अच्छे वस्त्र नहीं पहनना, वो क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ रोज साफ, जैसे मैंने वेस्टर्न कंट्री में देखा है और पूना भी अभी आगे बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कई बार लोग पैंट शर्ट दो तीन दिन तक चेंज ही नहीं करते, ऐसे काला कलर रखते हैं कि पता ही नहीं चले, यू नो वी शुड वॉश द क्लोथ्स डेली, जब सिंपल धोती कुर्ता साड़ी पहनी और रोज धोके पहने स्वच्छ रोज, ऐसे नहीं कि प्रभु अभी टाइम नहीं मिला या नहीं मेरा, स्वच्छ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और रीजनेबल रीजनेबल। ब्रह्मचारी के सिंपल एक ही मेनू है रोज, चिंता ही नहीं करना पड़ता। मेरे एक गिरिराज महाराज बता रहे थे, उनके कोई एक रिलेटिव हैं, वो कबर्ड खोल के आधा घंटा पहले ध्यान लगाते हैं क्या पहनेंगे आज, ये इसका इसका कॉम्बिनेशन है, जमेगा कि ये जमेगा वो जमेगा, उतने में ब्रह्मचारी का आधा घंटे में स्नान और टॉयलेट और सब कपड़े तिलक लगा के संसार दावना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस पर मतलब जनरली माताओं को होता है कि अच्छे कपड़े पहनने की आदत, वो गलत नहीं है, लेकिन बहुत ऐश्वर्यशाली नहीं हो, सिंपल हो, ज़्यादा खर्चा नहीं हो, अगर पैसे ज़्यादा ही हैं तो मंदिर को दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टेलर को देना ही है ना, उसको भगवान कहीं और से दे देंगे, बी वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे कोरीबे। स्लो स्लो डिस्टिंक्ट गैप के साथ पढ़ी है, थोड़ा स्लो स्लो।
डू नॉट एक्सपेक्ट ऑनर बट ऑफर ऑल रेस्पेक्ट टू अदर्स, ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा and within your mind render service to Radha and Krishna in Vrindavan।
हाँ, इसमें चार चीजें बताए गए, अमानी मान देना, इसका मतलब क्या, अमानी मतलब स्वतः मान ची अपेक्षा नहीं करने, आणि मान द म्हणजे दुसऱ्यांना मान देने, आपको मेरा मराठी समझ में आ रहा है, नेक्स्ट टाइम मराठी में दे लेक्चर, मेरा मराठी बहुत हाई है, PhD आपको नहीं समझ में आएगा। अमानी न मान देना, स्वतः मान की इच्छा नहीं करना और दूसरों को मान देना, कई बार क्या होता है दूसरों को प्रणाम करते हैं फिर देखते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अच्छा वो नहीं कर रहा तो नेक्स्ट में क्या फालतू थोड़ी हूँ, मेरे घर एक्सरसाइज घर में कर लेंगे, यहाँ क्या करना है, तो हमें प्रणाम करना चाहिए, सामने वाला नहीं भी करे, कई बार हमारा क्या होता है कि वो अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं अच्छा करूंगा, वो बुरा करेगा तो बुरा करूंगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये भगवान के लिए। भक्त क्या करते हैं, जो उनका शत्रु हो उसका भी परम मित्र बन जाते, दैट इज हाउ डिवोटी शुड बिहेव। ऐसे कौन सा उदाहरण है एक भक्त का जिनको लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर, वी शुड फॉलो इन दैट फुट्स। और नेक्स्ट क्या बोला आपने, कृष्ण नाम सदा लबे, कृष्ण नाम कभी लेने है, सुबह या दोपहर को, सदा मतलब हमेशा, तो कैसे होगा वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करवे, मन में वृंदावन राधा कृष्ण की सेवा कर, क्योंकि हम वृंदावन हर रोज जा नहीं सकते, आप में से कई फैमिलीज में हैं, कोई घर की जिम्मेदारी है या कोई ब्रह्मचारी है उनको मंदिर की जिम्मेदारी है, इसलिए हमें शहर में रहना है लेकिन मन में वृंदावन, या वृंदावन चंद्र, जहां पर राधा वृंदावन चंद्र है वही वृंदावन है। परपट पढ़िए, तात्पर्य धीरे धीरे पढ़िए।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सेज इन हिज अमृत प्रभा भाष्य दैट व्हेन ए मैन एंड वुमेन आर मैरिड दे बिगेट चिल्ड्रेन एंड आर दॉज एंटेंगल्ड इन फैमिली लाइफ, टॉक कंसर्निंग सच फैमिली लाइफ इज कॉल्ड ग्राम्य कथा। ए पर्सन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर नेवर इंडल्जेस इन आइदर हियरिंग और टॉकिंग अबाउट सच सब्जेक्ट्स। He should not eat palatable dishes since that is unfit for a person in the renounced order. He should show all respect to others but should not expect respect for himself. In this way, one should chant the holy name of the Lord and think of how to serve Radha and Krishna in Vrindavan.
ये जो ग्राम्य कथा इस तरह कई बार होता है, अरे उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उसका प्रमोशन हो गया है, मेरा नहीं हो रहा है, ये सब भी ग्राम्य कथा में आते हैं। अभी आप फैमिली में तो अपने बच्चों का सोचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए दूसरों के फैमिली अफेयर्स में। अपना अपना देख लेना और ज़्यादा जप करना। ओके, अभी 3 मिनट और बचे हैं, अभी इसका एक श्लोक स्किप करके नेक्स्ट पे जाएंगे। त्रिनादपि सुनीचे न सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
वन हु थिंक्स हिमसेल्फ लोअर देन ग्रास, हु इज मोर टॉलरेंट देन ए ट्री, एंड हु डज नॉट एक्सपेक्ट पर्सनल ऑनर बट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स कैन वेरी इजिली ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड।
हाँ, यहां बताया त्रिनाद अपि सुनीचेन। इसका तृण किसको बोलते हैं? तृण, घास का तिनका। अभी आप देखते हैं घास का तिनका, कितने लोग घास के तिनके पे पैर रखते हैं। यहाँ पे सामने गार्डन है, गार्डन में बच्चे खेलते हैं, तो तिनका कोई विरोध नहीं करता, अरे मेरे सिर के ऊपर क्यों पैर रख रहे हैं? हमारा क्या होता है, कोई बोलता है तो बोल देते सिर के ऊपर चढ़ गया ये है। लेकिन घास के ऊपर लोग पेशाब कर देते हैं, कोई विष्ठा कर देता है, तो घास कोई कोर्ट केस फाइल नहीं करता, वो सहन कर ले। ऐसे भक्त को क्या सोचना चाहिए कि मैं सबसे छोटा हूं, कि घास के तिनके के अंदर भी भगवान है, इसलिए घास के तिनके से भी मैं नीचे हूं। भगवान कितने महान हैं, भगवान महाविष्णु के रूप में है, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे। तो भक्ति में इतना मालूम होना चाहिए, भगवान महान आहे आणि मी लहान आहे, फक्त इतका समझ ला पाहिजे। मी भगवंताचा सेवक आहे, मैं भगवान के दासों के दासों का दोस्त, बस। त्रिनादपि सुनीचे न भाव आएगा कि आई एम वेरी वेरी लोअर, आई एम लोअर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के तिनके से भी। और तरो रिव सहिष्णु न, तरो तरो किसको बोलते हैं? पेड़ को। पेड़ का क्या गुण होता है? सहनशीलता। लेकिन पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। कोई उदाहरण बताइए, पेड़ क्या चीज को सहन करता है? हाँ, गर्मी। अभी तो गर्मी खत्म हो गई। अभी आपको याद है 1 महीने पहले पुणे में कितनी गर्मी थी, अप्रैल एंड में, मई में इतनी गर्मी, और पेड़ क्या कर रहे हैं? खुद गर्मी सहन कर रहे, दूसरों को छाया। हमारा क्या, जैसे मेरे पास छतरी है, बड़ी है, बेटे तुम भी आ जाओ, छोटी है तो आप अपना अपना देख लो, पहले मेरे को छाया मिल जाए, एक्स्ट्रा आपको देंगे। मेरे पास 4 रोटी है, डाइजेस्ट नहीं होता, बोलते प्रभु आप 2 ले लो, उसको लग रहा है दान दे रहे, लेकिन मैं बदहजमी से बचने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन रियल मान लो आपके आधी रोटी है, आपने कुछ खाया ही नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं, लंच भी नहीं, निर्जला किया है, और निर्जला का व्रत तोड़ने जा रहे हैं, और सामने कोई डिवोटी आ गया, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे उसके आने से पहले खा ले, आप सोचोगे नहीं मेरे को उसको आधा देने दो या फुल देने दो। तो कौन सा उदाहरण है शास्त्र में, कोई व्यक्ति स्वयं भूखा रह के दूसरों को भोजन दिए? रंती देव, उन्होंने फास्टिंग किया था कितने दिन के लिए? हाउ मेनी डेज ही फास्टेड? 48, मतलब 13 जून से लेकर अगस्त 28 तक। अरे कृष्ण, ऐसा अगर होगा तो कितने लोग बचेंगे? जन्माष्टमी के लिए कोई नहीं होगा, जुलाई 28 तक अगर जीवित ही नहीं रहेंगे। मेरे को याद है अभी 2 साल पहले मैं वृंदावन में था, 3-4 साल पहले निर्जला के बाद अनाउंसमेंट हुआ था कि 5:25 पे व्रत तोड़ना है। बंबई में 5:35 था, इसलिए मैं वृंदावन गया 10 मिनट बचाने के लिए, और वहां पे अनाउंसमेंट हुआ, यहाँ पे नींबू पानी रखा है, खिचड़ी रखा है, और हमको बस 20 मिनट और जप करना था। हम सीनियर डिवोटी के अलग कमरा था, सब नींबू पानी पड़ा था, अरे भगवान की फोटो थी, फोटो में मन नहीं लग रहा था, और सामने घड़ी को देख रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत धीरे चल रही बैटरी खत्म, हरे राम क्या। और जैसे वो सेकेंड्स वाला 3, 4, 6, 9, 11, 12 पे तुरंत एक डिवोटी बोले, प्रभु जी वो घड़ी 5 मिनट आगे है। मैं तुरंत सतर्क हो गया है ना। अभी उस समय समझे 5-10 मिनट में पानी पी रहा हूं, एक ही ग्लास है, और कोई मांगने आए तो हम क्या बोलेंगे। रंती देव के पास 48 डेज बाद वो फास्टिंग तोड़ने जा रहे थे, और व्यक्ति आया बोला महाराज जी मतलब भूख लग लिया है, एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का सेवा करना है, तुमने अपना आधा प्रसाद उसको दे दिया। अब थोड़ी देर बाद वो प्रसाद खाने जा रहे थे, महाराज जी मेरे को भूख लगी है। कौन आ गया? चंडाल, जो स्वपच, जो बहुत नीच परिवार। वो क्या देख रहे थे, अरे इसके अंदर भी वृंदावन चंद्र है, इसके अंदर भी गोपीनाथ है, इसके अंदर भी श्याम सुंदर है, ब्राह्मण है, चंडाल है, स्त्री है, पुरुष है, शेर है, सबके अंदर भगवान है, सबको आदर देना है। आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप शेर से मिलने जाओ, हरि बोल प्रभु आप कैसे हो, बोलेगा आपका इंतजार है, हाँ महाप्रसाद। वी शुड डिफ्रेंशिएट बट ऑल्सो लव एवरीबडी बिकॉज एवरीबडी इज पार्ट ऑफ कृष्ण। तो उन्होंने वो भी दे दिया, अब सोचा कुछ तो है, पानी पी लूंगा। वो पानी पीने जा रहे थे, और कौन आया पानी पीने जाने के समय? हु केम? एनीबडी नोज द स्टोरी? कुत्ते। एक व्यक्ति कुत्ते के गैंग को ले आया, मेरे कुत्ते बहुत प्यासे हैं। अभी दुनिया में लोग कुत्ते को कौन, अभी अपने खुद का पालतू कुत्ता हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली कुत्ते की कोई परवाह नहीं करता, कोई पसंद नहीं रहा तो कुत्ता सारखा है ना, गेट आउट, यू आर लाइक अ डॉग। बट यहाँ पे कुत्ते को पानी दे, मैं होता बोलता प्रभु जी आई एम नॉट एचओडी ऑफ डॉग्स, है ना, मैं कुत्तों का इंचार्ज नहीं हूँ, आपके कुत्ते हैं आप, माइंड योर बिजनेस। लेकिन वो कहते होते अरे कुत्ते के भगवान के हृदय में, लेट मी सर्व देम। वो कुत्तों को सारा पानी दे दिया, सारा दे दिया, एक बूंद भी नहीं रखा। और फिर उन्होंने एक श्लोक बोला, ओ क्या सुंदर श्लोक है, यू नो द संस्कृत ऑफ दैट श्लोक गौर प्रभु, यू नो किसी को मालूम है वो श्लोक? व्हाट वाज दैट वर्स ट्रांसलेशन? मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मैं जन्म जन्मांतर दूसरों के लिए कष्ट उठाना चाहता हूं, बर्थ आफ्टर बर्थ आई वॉन्ट टू सफर फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, दिस इज वैष्णव। मैं आप में से कितने भक्त हैं जो ऐसा कर सकते हैं? ये है महाप्रभु इज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी एंड यू, देन यू कैन बी कॉल्ड फॉलोअर ऑफ महाप्रभु। नहीं तो खाली भगवे कपड़े पहनने से, तिलक लगाने से महाप्रभु का अनुयायी नहीं बनता। आज हम जो मेरे मित्र हैं, बंसी गोपाल प्रभु है, श्री राम प्रभु है, उनको बहुत भूख लगी है, मेरे पास आधी रोटी बची है, तो क्या मैं उनको दे दूंगा? मुझे डाउट है कि मेरे अंदर उतना त्याग होगा कि नहीं। तो कैसे ये गुण आएगा? हाउ टू गेट दिस क्वालिटी? प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट वरी, जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा ऑल गुड क्वालिटीज विल डेवलप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंडेवर। आप प्रयास के बिना खाली गाइए हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, अपने आप सब गुण आने लगे। और सहनशीलता का दूसरा उदाहरण क्या? पेड़ का, शुकिय ना मांगे जल, जब पेड़ सूख जाता है तो पानी नहीं मांगता, कोई अपने आप आके पानी डाल दे तो ठीक है, मांगना नहीं। और कोई काटने आए थुक, थुक। और काटने वाला व्यक्ति थक जाता है, पेड़ के नीचे सो जाता है, फिर वो पेड़ के फल को खाता है। जो उसको काटने आ रहा है, मारने आ रहे हैं, उसको अपना बेस्ट चीज दे रहा है। अभी आपको कोई मारने आए तो आप क्या खिलाओगे? डालिम, केला, आम, आइसक्रीम? आप बदले में मारना जाओगे? ये गुण बहुत डिफिकल्ट है, मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं इस समय तो नहीं पालन कर पा रहा, लेकिन आई हैव फेथ इन प्रभुपाद कृष्णा, एक दिन वो गुण आएगा। वी शुड प्रे लाइक दिस। हरिदास ठाकुर की तरोरी वह सहिष्णु। और नेक्स्ट पॉइंट है अमानी न मान देना, सबको आदर देना और स्वयं आदर की इच्छा नहीं रखना। इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी दरवाजे के पास से प्रसाद ले रहे थे, वो भी बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट कहां प्रसाद लेने लगे? किसी को याद है? आज मैंने बताया था लेक्चर में, अन्न क्षेत्र फ्री प्रसाद, फ्री प्रसाद लेते। थोड़ी देर में वो भी बंद कर दिया। और फिर ये लास्ट क्या कि हम अंत करेंगे, थिंक वी विल, तो सबको ये टाइम कन्वीनियंट है क्या? रेतीपति प्रभु जी बोले थे व्हाट टाइम इज गुड, 10 to 12 ठीक है या 11 to 1 ठीक है, 10 o'clock ठीक है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पे हमारे किचन डिपार्टमेंट में थोड़ा इतना प्रैक्टिकल नहीं है सबके लिए प्रसाद बनाना, तो आज तो थोड़ा हलवा अरेंज किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से भी शायद प्रसाद होगा कि नहीं हम ट्राई करेंगे। कौन सा दिन आपके लिए, रविवार ठीक है या शनिवार ठीक है?
रविवार।
तभी शुरुआत के लिए हम महीने में एक बार कर रहे हैं, तो फिर बाद में हो सकता है कि और बढ़ा भी दें अगर रिस्पॉन्स अच्छा हो। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर कोई डिवोटीज प्रसाद के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहें, क्योंकि मंदिर के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो संभव नहीं है कि सबके लिए फुल प्रसाद हो, तो अगर कई भक्त को अगर इच्छा हो, मेरे श्री राम प्रभु आप हाथ पर, श्री राम प्रभु हैं या हु एल्स में भी, ऋषभवाणी प्रभु या दो तीन डिवोटीज हैं, आप उनको अपना अगर कुछ देना चाहें तो मंदिर के बता के कि आप इस कार्यक्रम के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो कार्यक्रम में आ रहे हैं एक सिस्टमेटिक हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको सिलेबस जैसे देना चाहता हूँ कि ऐसे हर महीने क्या पढ़ना है, इट विल बी लाइक अ कोर्स, चैतन्य लीला कोर्स। सो यू वुड लाइक दैट यू गिव योर नेम और नंबर, जिसमें आपका व्हाट्सएप अगर है तो व्हाट्सएप नंबर दें, तो आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कभी होगा। मोस्ट लाइकली अभी ये जून का हो गया तो जुलाई 3rd week या 4th week में होगा। तो हम चाहते हैं कि सिस्टमेटिक, चाहे अभी तो आज तो पहली बार है, आप सबका स्वागत है, लेकिन अगली बार से हम थोड़ा एक प्रकार का एक यू वॉन्ट टू डू इट मोर ऑर्गेनाइज्ड रजिस्ट्रेशन टाइप, सो दैट डिवोटीज को आप आ सकते हैं पहली बार अगली बार भी, लेकिन इसके बाद फिर हम सिस्टमेटिकली सिलेबस रखना चाहते हैं। अच्छा रहेगा बंसी गोपाल प्रभु, यू थिंक दैट विल बी बेटर, योर ब्लेसिंग्स। किसी भक्त को सुझाव है इस क्लास के बारे में? ये जैसे मैं प्लान कर रहा हूं अभी, जिससे कि हम सिस्टमेटिकली चैतन्य चरितामृत पढ़ सके। तो कंक्लूजन में, रघुनाथ दास गोस्वामी फिर प्रसाद वो अन्य क्षेत्र में लगे, वहां भी बंद कर दिया, फिर लास्ट में कहां प्रसाद ले रहे थे किसी को याद है? देखो जगन्नाथपुरी में आपने वो इलाका देखा है जहां प्रसाद बेचा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ सबको याद रहता है नाम, यस, यहाँ आनंद से प्रसाद लेते हैं, तो आनंद बाजार में प्रसाद बेचते हैं, फिर 2 दिन बाद वो प्रसाद इट डजंट स्मेल सो गुड, स्पिरिचुअली तो अच्छा है, तो वो प्रसाद गाय को बांट देते हैं, फिर गाय भी जो नहीं खाते तो वो प्रसाद फिर ऐसे रखा हुआ होता है, और रघुनाथ तो प्रसाद को लेके धो के नमक डाल के रखाते हैं। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु इतने खुश होते हैं, एक दिन जाके प्रसाद चुरा के खाते हैं, हा रघुनाथ तुम्हें नीति नीति प्रसाद खाइब अमर न दीब, क्या मतलब हुआ? तुम्हें नीति नीति प्रसाद खाइब, आप नया नया प्रसाद खाते हो, अमर न दीब मतलब आप हमें नहीं दोगे, और वो खाते हैं। सेकेंड टाइम स्वरूप दामोदर हाथ पकड़ लेते, प्रभु आप भगवान हो, आपके लिए ये खाना ठीक। फिर भगवान खाते खाते बोले, मैंने इतने प्रकार के महाप्रसाद खाए हैं लेकिन इतना टेस्टी प्रसाद कभी नहीं खाया, क्या अच्छा लगा भगवान को? उसका नमक अच्छा था या मिर्च अच्छा था? नहीं, उसके अंदर भक्ति थी, वैराग्य था, नम्रता, ह्यूमिलिटी, डिवोशन एंड रिनंसिएशन, ये जिसके पास है भगवान को बहुत प्रिय। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, 5 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, विल हैव 5 मिनट्स प्रेयरफुल कीर्तन, एकदम पुकारने के भाव से, जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि इसे छोटा बच्चा माँ को पुकारना है, प्रभुपाद बोलते हैं लाइक ए चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, इस भाव से पहले मैं गाऊंगा, ऐसे आप हाथ जोड़ के सुनेंगे, फिर आप कहेंगे गोरनीताई राधा वृंदावन चंद्र, भगवान के पिक्चर्स हो या भगवान हो कोई अंतर नहीं है, लेट अस चैंट इन दैट मूड फॉर 5 मिनट्स और फिर थोड़ा सा हल्का सा प्रसाद दें। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, एवरीबडी जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए प्रभु Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Loudly, very loudly. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Loudly, Hare Krishna, Gauranga, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Gauranga, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hey Radhe.
श्याम। सब लोग साथ में बोलिए एक बार, हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे हरे। लाउडली हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जयो राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जयो गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय जयो जगन्नाथ जय जगन्नाथ बल देवा जय सुभद्रा जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय श्री गौनिताय राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय श्री गौरंग महाप्रभु लीला की जय जय लीला श्रोतागण की जय हरे कृष्णा। आपका उत्साह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। ऑलमोस्ट एक सवा बारह सवा दस शुरू किया, सवा बारह दो घंटे हो गए, सब सुनते रहे, कोई सोया भी नहीं। आश्चर्य की बात, यह सोया तो भी पता नहीं चला। एटलीस्ट तो हमने ऐसे रखा है कि दो पेपर रखे हैं, तो जो लोग रेगुलरली क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर दे दें, जिसपे व्हाट्सएप हो अगर, या व्हाट्सएप नहीं भी हो तो भी मैसेज हो, तो आपको बताया जाएगा अगला क्लास कब होगा और क्या विषय पढ़ के आना है। ये एक सूचना है। दूसरा सूचना है कि जो लोग चैतन्य चरितामृत खरीदी करना चाहते हैं डिस्काउंट पे, वो अपना नाम इंग्लिश हिंदी लिख सकते हैं। अगली बार पुस्तक आएगी, फिर उसके बाद आपको, पुस्तक लेने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसादम वहां पर है, जाते समय आप प्रसाद ले लीजिए। और एक पेपर रखा है, चार पेपर रखे हैं, दो प्रभु जिसके लिए, दो माता जिसके लिए। वहां पर पेन भी रखा है, आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर रख के फिर प्रसाद लेके फिर जा सकते।
हरे कृष्णा। तो एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए, तो हम श्रीमान कृष्णानंद प्रभु का बहुत धन्यवाद देंगे। प्रभु जी का असीम कृपा है एक्चुअली पूर्ण भक्तों के ऊपर। सब जगह पे प्रभु जी का लोग बुलाव चाहते हैं, मगर प्रभु जी खास करके पूना के लिए टाइम निकालते हैं, ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। और अभी यहाँ पे गौर कथा अमृत भी चालू किया, तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य भाग्यशाली है कि प्रभु जी का यहाँ पे संग मिल रहा है। तो हम उनको धन्यवाद देंगे तीन बार हरि बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रसाद उधर है और बेसिन उधर है हाथ धोने के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, नहीं इतने लोग आ गए, मैं सोच ही सकता था इतने लोग आएंगे। I was not prepared. आप ही लेने अपने नाम वाले, विल कीप सम खिचड़ी प्रसाद, मिनिमम बजट में 1000 करेंगे,
उसको हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शेयर द गौर कथा। नहीं
बात, एक्चुअली मैं तो सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते हो जाए, लेकिन पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट से।
जैसे 15